Om Shanti and very good morning to all of you. आप सभी ने ओम शांति कहना सीख लिया? सब हाथ खड़ा करेंगे? हाँ, तो अभी कहेंगे ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी आज समझा होगा। आज आपका पहला लेसन हुआ है, तो आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसका टाइटल है, अम्ब्रेला थीम है, स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वस्थ और विधि सम्मत समाज। आज हम सबकी चाहना होती है, या यूं कहें कि हर मनुष्य की चाहना होती है कि वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहे। किसी को भी, हम सब भी कानूनी प्रोफेशन से हैं, लेकिन किसी को भी डॉक्टर के पास या वकील के पास कोर्ट में जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा है ना? सब चाहते क्या है? लॉफुल सोसाइटी हो। लॉफुल सोसाइटी अगर बनेगी तो क्या होगा? कोई क्राइम नहीं होगा, सब अपने लॉ में चलेंगे। फिर आप कहेंगे कि हमारा प्रोफेशन कैसे चलेगा, है ना? तो परमात्मा आए हैं ऐसा एक समाज स्थापन करने के लिए जिसमें सभी हेल्दी, वेल्दी और लॉफुल एंड हैप्पी होंगे। तो ऐसे समाज में जाने के लिए आप सब तैयार हैं? तैयार है? वहां सब हेल्दी हैप्पी रहेंगे, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं और लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होगा। तो इसी एक विषय को लेकर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो ये सब समाज की स्थापना करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है स्पिरिचुअल पावर। तो ये स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर जब एकता आएगी, गुणों की एकता आएगी, और हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस जो होते हैं, जस्टिस के होते हैं, जैसे हम जुरिसप्रूडेंस में सीखते हैं सभी, तो उन प्रिंसिपल्स के आधार पर चलेंगे और परमात्मा को हम अपना पिता मानेंगे, उनसे सारे कनेक्शन जोड़ेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा। क्योंकि परमात्मा एक पावर हाउस है और पावर हाउस से जब कनेक्शन जुड़ता है तो पावर आती है, जैसे हम बिजली का देखते हैं, है ना? तो इसी प्रकार हमें भी परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, लेकिन वो कनेक्शन जोड़ने की विधि यहाँ सिखाई जाती है। तो इसी उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं निराकार परमपिता परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा और हमारी अव्यक्त मूर्त सभी दादियों का इस कॉन्फ्रेंस में आवाहन करती हूँ। और अभी मैं अपने आज के जो मेहमान हैं उनको डायस पर आमंत्रित करती हूँ। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पुजारी जी, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन जिंदल जी, आप आए। हम कर्तव्यध्वनि से हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। हम तालियां बजाते रहेंगे जिससे हम भी एक्टिव रहेंगे सभी, और हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीडी राठी जी, डॉक्टर बी के रश्मि ओझा जी, राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, राजयोगिनी दीदी संतोष जी, राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, राजयोगिनी लता दीदी जी, ताली बजाते रहें, उनका स्वागत करते रहें। ब्रदर जगत किशोर प्रसाद जी, ब्रदर बी के संदीप अग्रवाल जी, भ्राता नाथमल भाई जी, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। Thank you. मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप जो भी पीछे बैठे हुए हैं भाई बहने थोड़ा आगे आकर बैठेंगे, पीछे बैठे हुए भाई बहने आपसे अनुरोध है कृपया आगे आकर बैठें। ब्रह्मा कुमारी में एक यूं कह की प्रथा है कि जो हम कुछ भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं और अंत करते हैं तो परमात्मा की याद से शुरुआत करते हैं। कहा जाता है वेल बिगन इट हाफ डन। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा की स्मृति से कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो जिस लक्ष्य से, जिस संकल्प से हम वो कार्यक्रम करते हैं या काम कार्य करते हैं तो वो अवश्य ही सफल होता है और उसमें हमें सक्सेस मिलती है। तो हम सर्वप्रथम 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। जैसे हमारी भारत की परंपरा है कि हम हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो मैं अभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और मंचासीन मेहमानों का बैजेस, प्लांट्स और अंग वस्त्रम द्वारा स्वागत करें। Thank you. हम सभी तालियों से अपने मेहमानों का स्वागत करें और इसी में आप सभी का भी स्वागत है। हम अपना भी स्वागत करेंगे, हमारे मेहमानों का भी स्वागत करेंगे। बहुत ही खुशी का अवसर है, एक हम नए मार्ग पर हम सभी जा रहे हैं, जिस बात की हमें चाहना होती है एक आंतरिक सुकून शांति और खुशी की, उसी को हम सीखने आए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। आज का जो हमारा विषय है स्पिरिचुअल पावर्स फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी, इस विषय पर एक थीम सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे हमारा मधुरवाणी ग्रुप। कल भी जैसे आपको बताया गया था, हमारे सतीश भाई हैं, उनकी 3000 से भी अधिक स्वरचनाएं हैं, उन्होंने आध्यात्मिक सॉन्ग और सब ऐसे लिखे हुए हैं। और हमारे यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इसके लिए आप गीत लिखते हैं, काफी कैसेट्स भी आपकी बनी हुई हैं। मोर देन 45 इयर्स से आप समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, तो मधुरवाणी ग्रुप में हमारे समर्पित भाई है भ्राता भानु भाई, भ्राता सुरेंद्र पॉल भाई और जयराज भाई। ये तीनों भाई अभी एक थीम सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे आज का विषय के अनुरूप।
ओम शांति। नीति न्याय समता ममता का जहां पर होगा सुंदर राज्य, हम लाएंगे राम राज्य। आएगा वो राम राज्य, हम लाएंगे राम राज्य। आएगा वो राम राज्य। एक बार आप सभी अपने अभिनंदन में तालियों के साथ अभिनंदन करें, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
गगन में गूंजी
उठी धरा से गगन में गूंजी, आज यही दिल की आवाज, आने वाला राम राज लाएंगे हम होगा। अध्यात्म सशक्तिकरण से होगा स्वस्थ और न्याययुक्त समाज। आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज। आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज।
पे चले अध्यात्म को साथ ले चले।
नव युग रचता आया है आपको उसी ने बुलाया है।
सबके सिर पर सजने वाला
वाला
सबके सिर पर सजने वाला। प्रकाश और शक्ति का ताज आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज। आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज।
बहुत खुशी के पल हैं, आप तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार करें।
के न्यायालय में हो आत्मा अपना न्यायाधीश।
मानस के न्यायालय में हो आत्मा अपना न्यायाधीश।
करे फैसला निज कर्मों का फिर पाएंगे प्रभु आशीष।
अध्यात्म शक्ति सर्वोच्च शक्ति अध्यात्म शक्ति सर्वोच्च शक्ति। राजयोग का यही है राज। आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज। आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज। आध्यात्मिकता से ला रहे असली स्वराज है पा रहे।
आध्यात्मिकता से ला रहे असली स्वराज है पा रहे।
स्वस्थिति से स्वस्थ रहेंगे विधि सम्मत सुराज कहेंगे।
शिव शक्तियों के संग चले हम।
शिव शक्तियों के संग चले हम। वक्त का कहता है अंदाज आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज। की आवाज आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज आने वाला राम राज लाएंगे हम राम राज
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई एंड मधुरवाणी ग्रुप आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया और हमें क्या करना है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके ये भी आपने बता दिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हम दो मिनट परमात्मा की याद में बैठी आप सभी ने सोचा होगा कि ये एकदम लाल लाइट क्यों लगा। हम सब जानते हैं रोड पे रोज ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, वो किस लिए होती है? कुछ देर वहां ब्रेक मिलता है राइट। तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में भी हर एक घंटे में और कुछ पांच या छह बार ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा विचारों का ट्रैफिक बहुत फास्ट चलता है, हम बहुत उलझे हुए होते हैं और बातों में नेगेटिव वातावरण में चले जाते हैं। तो इस टाइम ब्रेक होता है और इस टाइम हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम खुद भी शांत हो जाते हैं और शांति का वातावरण फैलाते हैं। आप सबको पसंद है, अच्छा लगा? आप अपने लोकल जगह पे भी जहाँ पे भी होते हैं अगर आप बीच बीच में एक मिनट का ब्रेक लेके हर घंटे में एक मिनट का ब्रेक लेके अपने मन को शांत कर देंगे तो आप जो उलझे हुए हैं तो आप एकदम सुलझ जाएंगे। जो भी कार्य उलझे हुए हैं तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि वहां से माइंड जब डाइवर्ट होता है तो और परमात्मा से हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिस को आप वहां भी कंटिन्यू करें ऐसी हमारी शुभ आशा है। WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन बताई है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफॉर्मिटी। तो केवल डिसीज नहीं है यही हेल्दी नहीं है, सोशली मेंटली फिजिकली सभी तरीके से हमें फिट रहना है, होलिस्टिक हेल्थ जिसे कहा जाता है। तो ये होलिस्टिक हेल्थ करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BD राठी वाइस चेयरपर्सन जूरी स्विंग, आप आज का वेलकम स्पीच प्रेजेंट करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BD राठी जी, आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मोर देन 30 इयर्स से जुड़े हुए हैं। आप रेगुलरली और पंक्चुअली यहाँ के स्टूडेंट हैं, कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ कैसे जाऊँ, नहीं, बहुत रेगुलरली आपने अटेंड किया है और हमारे यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, स्पीचेस देते हैं नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर। और जूरिस्ट विंग का ये सौभाग्य है कि आप हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है आपसे और जितनी भी सेवाएं होती है जूरिस्ट विंग की भी और सेवा केंद्रों की भी उसमें आप मुख्य रूप से गाइडेंस देते हैं और बहुत विशेषता संपन्न हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपकी आध्यात्मिकता में बहुत रुचि है, आपने बहुत आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, ज्योतिष भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे मल्टी क्या सारे पर्सनैलिटी है आपकी। तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप आज का वेलकम स्पीच प्रस्तुत करें, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी जी राठी जी।
थैंक यू श्रद्धा बहन, सर्वशक्तिवान, हम सब के बहुत मीठे प्यारे बाबा की इस महासभा में विराजमान आप सभी बहुत प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान महान विभूतियां जिनके थॉट्स, जिनके संकल्प, जिनके विचार श्रवण योग्य है, जिनके विचारों की विवेचना से हमें नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारी ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट कमेटी की आदरणीय सदस्य बहन संतोष जी, हमारे जुरिस्ट पर्सन जुरिस्ट विंग की चेयरमैन दिल्ली से पधारी पुष्पा बहन जी, मेरे बहुत प्यारे मित्र जस्टिस पुजारी साहब, जस्टिस जिंदल साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर रश्मि बहन जो चीफ जस्टिस छागला जी के कॉलेज में वहाँ बहुत सुंदर लेक्चर और आर्टिकल्स प्रस्तुत करती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर नथमल भाई कटक से पधारे हैं, मनीष भाई एडवोकेट और सभी महानुभाव आप सबका बहुत स्वागत। आज स्वास्थ्य थोड़ा परमिट नहीं कर रहा, मुझे आपसे बहुत चर्चा करना है, कल बहुत विषय है, इसलिए थोड़ी सी मैं एनर्जी बचाना चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। आज का विषय बहुत सुंदर, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य स्वस्थ और विधि सम्मत समाज की स्थापना के लिए, इसमें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का क्या रोल है, इसमें हमारी रश्मि बहन बताएंगी बहुत अच्छे से। फिर भी आप देखेंगे कि आज विश्व में कोई भी स्वस्थ नहीं है, नोबडी, तन से मन से धन से सब दुखी हैं, अस्वस्थ हैं। सारे विश्व की हालत देखिए, सोसाइटी का कोई भी प्राणी लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं, विधि सम्मत नहीं। आए दिन हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स से, राजनेताओं से आपस में कैसे लड़ाई झगड़े करते हैं। दूसरी तरफ देखें हम तो जाति, रंग भेद, देश विदेश, कितने विवाद। सोसाइटी और परिवार को देखें, सास बहू, बाप बेटे, कहीं भी कोई सुख शांति नहीं। ऐसे में आज का विषय बहुत गंभीर, प्रासंगिक और इम्पोर्टेंट है। मैं आप सब लोगों के भाग्य की सराहना करना चाहता हूँ जो इतने मुख्य विषय पर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पधारे। आप देश के वो कर्णधार हैं जिसकी ओर चारों ओर विश्व की जनता देख रही है कि ये सब लोग तैयार हों और हमें भी मार्गदर्शन करें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ जो त्रिदिवसीय प्रोग्राम रखा है उसका भरपूर लाभ लें, खुद भरपूर होकर के समाज और विश्व को कुछ दें। एक साइकोसोमेटिक वर्ल्ड होता है जिसमें हर प्रकार की बीमारी पहले मन से शुरू होती है। कोई भी बीमारी हो, आज समाज में जितने भी द्वंद चल रहे हैं, अशांति, ये सब मन की उपज है। सबसे पहले मन पर प्रभाव आता है विकारों का। जब यदि हम मन को वहीं पर हील नहीं करेंगे, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, तो वही बीमारी मन की साइकोसोमेटिक प्रोसेस से शरीर की ओर बढ़ती है। कई बार आप देखते होंगे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आती आदि आदि। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि भाई साहब आपको तो कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे टेस्ट ठीक हैं। उसका कारण ही यही है कि जब मन में बीमारी होती है स्टार्ट, तब कोई भी लेबोरेटरी में टेस्ट नेगेटिव नहीं आता, हमेशा आपको लगेगा अच्छा है। पर यदि फिर भी हमने हील नहीं करा मन को, तो साइकोसोमेटिक प्रोसेस से वही बीमारी शरीर में परिलक्षित होने लगती है और धीरे धीरे हमारी एक्शन में आने लगती है, और यही सारे विश्व का हाल है। हम अपने इस मन को कैसे हील करें, कैसे दुरुस्त करें? विधि सम्मत की बात है तो वो तीन प्रकार की विधियां हैं, जैसे डिवाइन लॉज, सोशल ट्रेडिशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आप देखिए हर लॉ में कहीं कोई पारंगत नहीं, पारंगत तो दूर छू तक नहीं गया, जो कुछ भी कलाएं थी समाप्त तो होती जा रही हैं। ऐसे में हमारी सोशल एक्टिविटीज और सरकार और हम खास करके हमारा लॉ का क्षेत्र कितना काम करता है, कॉम्प्रोमाइज काउंसिलिंग, ये भी एक मन को हील करने की प्रोसेस है। हम समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज के लिए भी वही करते हैं, और जब मन हील होने लगता है तो विवाद दूर होने लगते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन, 900 से ज्यादा दिन हो गए लगातार युद्ध चल रहा है इसराइल, और कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं कि कैसे भी दोनों देशों में मन को हील करें उनके पदाधिकारियों को, तो शांति हो, यदि कर भी दिया तो वो अस्थायी होगा। ऐसे ही ट्रेडिशनल लॉज लीजिए, जो परिवार और समाज में चलते हैं, वहां भी देखिए सब अस्थायी व्यवस्था है। तो मन को परमानेंट हील करने के लिए क्या व्यवस्था है, वो है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, धर्म भी नहीं। धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर है, कल मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। धर्म का ही युद्ध चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दूसरे देश भर के, तो फिर वह आध्यात्म क्या है जिसको हम, जिसके माध्यम से हम मन को हील करें, सशक्त करें और स्वस्थ और विधि सम्मत समाज की हम स्थापना में योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत पुनः स्वागत। हमारे बीच बहुत विद्वान वक्तागण हैं, हम उनके विचारों को शेयर करेंगे। सॉरी मैं अधिक बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आज भाई साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसलिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्व में स्थित हो जाए, आइए स्वस्थ हो जाए, मर्यादा को सुरक्षा समझे, न्यायपूर्ण मस्त हो जाए, तन मन धन जन सब पवित्र बन जाए, समाज दिव्य विधि अपनाए, सच्चरित्र बन जाए। अभी मैं स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी नन्ही नन्ही कुमारियों को, कुमारी ओवी, कुमारी उर्वी, कुमारी भूमि, अंबरनाथ सेवा केंद्र महाराष्ट्र घाटकोपर सब जोन की है। आप सभी ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, सुना है ना? अभिमन्यु ने पेट में ही ज्ञान लिया था, राइट? लेकिन आधा ज्ञान लिया था, लेकिन ये बच्चे तो ऐसे हैं, इन्होंने पेट में भी पूरा ज्ञान लिया और अभी भी वो ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी कुमारियों का, बहुत छोटी छोटी कुमारियां हैं। आपका स्वागत नृत्य का सॉन्ग है, सांसों की सरगम गाएं। बचपन से ही ये, इन्होंने ही अपने माता पिता को ज्ञान में लाया है, क्योंकि ये जब पेट में थी तभी से ये ज्ञान सुन रही है, और रोज रेगुलर सेंटर पर जाती है, मुरली क्लास सुनती है, मेडिटेशन करती है। तो इन कुमारियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुमारी ओवी, कुमारी उर्वी, कुमारी भूमि स्वागत डांस प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद कुमारी ओवी, कुमारी उर्वी, कुमारी भूमि अंबरनाथ सेंटर की है। बहुत छोटी छोटी कुमारियां, फिर से एक बार गर्दा सेंटर से स्वागत करेंगे बच्चियों के। आपके स्वागत में कदम थिरके हैं, आभार में हमारे हाथ थिरके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बी के रश्मि उनसा पेंची को. आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग है. आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी रही है और अभी जस्टिस छागला चेयर की चेयरमैन है. मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताएं. आप भी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और इस विश्वविद्यालय के जो फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया है साकार रूप में, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं. और जितनी ऊंचे कहते हैं कि विद्या विनयेन शोभते, तो जितनी आपकी ऊंची पोस्ट है, आपको कल जब इनका लेक्चर है आज रात को, तब कल लेक्चर है इनका, तब आपको विस्तार से इनके बारे में बताएंगे. बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम पर है, बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके नाम पर है, पर जितने ऊंचे हैं वो उतने ही नम्र और निर्माणचित हैं. बहुत मीठा स्वभाव है और बहुत सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं. तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी रश्मि बहन जी आज के इस कॉन्फ्रेंस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे.
ओम शांति. ज्ञान दया प्रेम के सागर परमपिता शिव परमात्मा, ऑल द एस्टीम डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, ओम शांति एंड अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आज 13 सितंबर 2024 है और 13 सितंबर एक खास दिन होता है. जब भारत को आज़ादी मिली तो 13 सितंबर 1947 के कुछ दिन बाद 13 सितंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम निर्णय लिया था आज के ही दिन 13 सितंबर को कि कश्मीर एक भारत का हिस्सा होगा, जो बात सत्य हुई है. 13 सितंबर और एक दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, इट्स द इंटरनेशनल चॉकलेट्स डे. और हम सब यहाँ से ज्ञान वैल्यूज की चॉकलेट्स लेकर घर जाएंगे जो जो 3 दिन के सेशंस होंगे उसमें. और मैं यही आशा रखती हूँ कि ये मूल्य नैतिक मूल्य की चॉकलेट्स हम सिर्फ खाएंगे, स्वाद नहीं लेंगे, लेकिन उनको ग्रहण भी करते जाएंगे. तो आप देख सकते हो कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम है स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी. तो क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वी आर नॉट लिविंग इन अ हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी? हेल्थ का मतलब क्या है यह तो अभी अभी आपको श्रद्धा बेन ने बता दिया. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन किया है कि इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इसमें मैं एक और शब्द ऐड करूंगी, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. और एंड इट्स नॉट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. यानी कि हमारे कोई हम में बीमारी नहीं है तो इसलिए हम हेल्दी है यह नहीं है. अभी अभी जस्टिस राठी सर ने बताया कि चाहे कितने पैसे हो, चाहे कितने क्वालिफिकेशंस हो, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन खुश नहीं है, तो हम हेल्दी नहीं है. सो इट्स नॉट जस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी और डिजीज. आज हम उस डिकेड से गुजर रहे हैं जहां हर जगह अशांति है. अभी अभी यूक्रेन रशिया की बात हो रही थी, चाहे कोर्ट में लिटिगेशंस हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती रहे, हर जगह अशांत है. घर घर में भी अशांति आज बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो वी आर पासिंग थ्रू अ डार्केस्ट ईरा. बाबा हमें कहते हैं कि ये संगम युग है और हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम अब सतयुग में जाएंगे. बट ये इतना बढ़ेगा कि फिर उसके बाद हम स्वर्ग का अनुभव कर सकेंगे. तो हर जगह इट्स द डार्केस्ट एरा वी आर लिविंग इन. लास्ट टाइम जून में कॉन्फ्रेंस ज्ञान सरोवर में हुई थी, वहाँ मैंने कुछ जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र ने जो 17 गोल्स बनाए हैं, जो कि हमें हर पूरे यूनिवर्स को 2030 तक रियलाइज करना है, तो उसमें गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 है कंप्लीट वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एंड गोल नंबर 16 है जस्टिस पीस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन. लेकिन हमारे नीति आयोग के कैलकुलेशंस के मुताबिक 11% पॉपुलेशन आज पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी कि 145 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी. तो क्या इसको हम हेल्दी सोसाइटी कह पाएंगे, ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है. आज हर जगह हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, हर जगह हर प्रोफेशन में हर घर में स्ट्रेस है. और कल मेरा पूरा एक घंटे का सेशन है, कई सारे दृष्टांत भी आपको दूंगी, लेकिन ये स्ट्रेस कुछ नॉर्मल चीज नहीं है. स्ट्रेस से हमारे हेल्थ पर काफी असर पड़ता है. तो यह जो थीम जूरी स्ट्रिंग ने सिलेक्ट की है, दैट इट इज द स्पिरिचुअल पावर विच कैन हेल्प इन अ हेल्दी सोसाइटी. और जब लॉफुल सोसाइटी की बात आती है तो हम निश्चिंत ही देख रहे हैं, आप सारे लॉयर्स हो, काउंसिल्स हो, जजेस हो, कि क्या हम जब यहाँ जी रहे हैं उसको हम लॉफुल सोसाइटी कह पाएंगे. मेरे दिमाग में एक दृष्टांत याद आता है, और यह सत्य घटना है, ओडिशा में हुई थी. और जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी जो रह चुके हैं चीफ जस्टिस, वो एक बार उनको पुरी में एक लॉ कॉलेज में एज अ चीफ, जब वो चीफ जस्टिस थे उनको इनविटेशन आया कि आप चीफ गेस्ट बन के लॉ कॉलेज में आइए. तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने के बाद लॉ कॉलेज में जाऊं. और वो दर्शन करने जगन्नाथ पुरी मंदिर में गए तो उन्होंने थोड़ी काफी सारी भीड़ तो वहां रहती है, तो जब वो अपने गार्ड्स के साथ चल रहे थे तो जोर से पीछे से आवाज सुनी रंगनाथ बाबू, तो ये बिल्कुल चौंक गए कि क्या मेरा नाम किसी ने ले लिया. और वो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वो इधर उधर देखने लगे. वापस दोबारा दो बार आवाज आई रंगनाथ बाबू, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भिखारी सा आदमी मंदिर के द्वार पर बैठा था, बिल्कुल फटे हुए कपड़े थे और एकदम गरीब था, और उसको पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था, पूरे हाथ और पैर बैंडेज से लगे हुए थे. तो ये जस्टिस मिश्रा जी उनके पास गए, उन्होंने कहा क्या आप मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा रंगनाथ बाबू आपने मुझे नहीं पहचाना. तो ये चौंक गए क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा था. तो उस भिखारी ने कहा कि कई साल पहले मैं एक डाकू था, कुलिया डाकू था, मैंने कई सारी चोरियां की थी, मैंने कई सारे मर्डर्स किए थे, और लोअर कोर्ट ने मुझे रिग्रस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी. और जब आप ओडिशा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो आपने मेरी अपील ली थी और आपने मुझे डिफेंड किया, तो मेरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम हो गई और मुझे एक्विटल यानी कि मुझे छोड़ दिया. लेकिन आज देखिए मेरी हालत क्या है, मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, चैरिटी से जो कुछ मुझे कोई लोग भीख में दे देते हैं उससे मैं खा रहा हूँ. और वही भिखारी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी से कहा कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट इज द विट ऑफ ह्यूमन विच वर्क्स एंड विच डिसाइड्स व्हाट हु शुड बी एक्विटेड एंड हु शुड बी कन्विक्टेड. लेकिन इसके ऊपर की जो न्याय है, उसकी ऊपर की जो अपर कोर्ट है भगवान की, तो वहाँ विट ऑफ ह्यूमंस नहीं चलते हैं, वहाँ तो एक ही विट चलता है, वो है हमारे कर्म, जिसको हम कार्मिक फिलॉसॉफी कहते हैं। तो वो है हमारे कर्म, जहाँ हमें कोई माफ नहीं करेगा, हमें अपने कर्म भुगतने ही भुगतने हैं। तो जब हम लॉफुल सोसाइटी की, तो जस्टिस मिश्रा जी एकदम भावुक हो गए और उनके मन में उन्होंने अपने पॉकेट में से 100 रुपये निकाल के उस भिखारी को दे दिए और चुपचाप वहां से चले गए। जैसे ही वो लॉ कॉलेज पहुंचे तो विद्यार्थी सारे ऑडिटोरियम में बैठे थे, फैकल्टीज बैठे थे, उन्होंने सबसे पहला यह इंसिडेंट सबको कह के सुनाया और उनके आंख में आंसू आ गए ये कहते कहते कि देखिए हमें अपने कर्म कैसे गार्ड करने हैं और कर्म की सजा हमें खुद को ही कैसे भुगतनी है। अगर यह रियलाइजेशन एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हो सकता है तो हम सब जूरिस्ट को यहाँ आके, जैसे चॉकलेट्स मैंने कहा, तो हमें यह कार्मिक चॉकलेट्स, हमें ये वैल्यूज जो यहाँ इम्बाइब होती है वह लेकर ही जाना है और लगातार याद करना है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। दूसरी एक बात और याद आती है जब एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात आती है कि सन 2000 में, यह सत्य घटना है, दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया में 7th राजस्थान राइफल यूनिट था और वहाँ कुछ आतंकवादी घुस गए और उन्होंने एकदम शूट आउट किया तो हमारे 3 जवान, ब्रेव सोल्जर्स जिसको कहेंगे, उनको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। उसमें से सारे भाग गए, एक कल्प्रिट पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद आरिफ था और 2000 में उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ट्रायल कोर्ट में उसकी सुनवाई 2005 में खत्म हुई जब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, ही शुड बी सेंटेंस टू डेथ, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने 2007 में डेथ सेंटेंस कंफर्म की। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में 4 साल के बाद यानी कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी की सजा सुनानी है। उसके बाद उसने रिव्यू पिटीशन फाइल की, रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गई। उसके बाद उसने जो 2011 में डिसमिस हो गई, उसके बाद उसने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की, वह भी डिसमिस हो गई। तो 2014 में उसकी क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हो गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा डिसीशन दिया कि जब जब हाई कोर्ट से डेथ सेंटेंस के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसकी सुनवाई 3 जजेस करेंगे, नहीं कि 2 जजेस, 3 जजेस को ही सुनना है। तो मोहम्मद आरिफ जिसने ये टेररिस्ट अटैक किया था उसको और एक चांस मिल गया और उसने फिर से अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। वह रिव्यू पिटीशन 8 साल के बाद डिसाइड हुई और 2022 में वह पिटीशन भी डिसमिस हो गई। उसने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने अपनी मर्सी प्ली फाइल की। अभी 2024 में मिसेज मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने भी वह मर्सी प्ली डिसमिस कर दी और आज 24 साल से, 2000 में यह किस्सा हुआ था, आज टुडे वी आर इन द ईयर 2024, 24 साल के बाद भी उसकी डेथ पिटीशन, वो आज भी जिंदा है, जेल में है और वह अवेट कर रहा है क्योंकि अभी और कोई पिटीशन बची नहीं है कि कब उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। तो जब लॉफुल सोसाइटी की बात होती है, आर वी ट्रूली लिविंग इन अ लॉफुल सोसाइटी, हालांकि मैं यह एग्जाम्पल कल देने वाली थी, लेकिन लॉफुल सोसाइटी की जब बात आती है तो वेर आर अवर लॉज। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 2024 में 3 नए क्रिमिनल लॉज कानून आए 1 जुलाई 2024 से। उसके बाद भी ना ही सिर्फ कलकत्ता में लेकिन और भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई थी. तो वेदर लॉ इज एन आंसर व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉफुल सोसाइटी, इट इज ओनली द स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी विच कैन प्रोवाइड अस द सॉल्यूशंस. और हमारे सबसे पहले प्रथम पेट्रन मेंबर जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर सर कहते थे कि इट इज ड्वेलिंग इन ईच वन ऑफ अस. हम सब में कॉन्शियस है, हम सब में डिविनिटी है, हम सब में स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन हमें उसको जागृत करने की आवश्यकता है. इट इज ओनली द स्पिरिचुअल पावर. तो लता बहन ने जो टॉपिक चूज किया है स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी, इट इज दैट पावर विच वी नीड टू इग्नाइट एंड अवेकन, जिसकी वजह से हम एक लॉफुल सोसाइटी को देख पाएंगे. हमारी जूरिस्ट विंग काफी आगे है इस सारी चीजों में कि कैसे हम लॉ के साथ वैल्यूज को इम्बाइब करें. ऐसे कुछ उदाहरण में मैं कल के सेशन में भी दूंगी. और हम कैसे न्याय दे सके, हाउ कैन वी मेक अवर सोसाइटी अ पीसफुल हैप्पी एंड अ लॉफुल सोसाइटी एज सच. आज हम देखते हैं कि नैतिक मूल्य घटते जाते हैं, लॉ से हमें कुछ ज्यादातर फायदा नहीं होता है, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी काफी सारे कारण है जिसकी वजह से सभी को न्याय नहीं मिल पाता है. तो वी आर लुकिंग आउट फॉर अ सोसाइटी विच विल बी ट्रूली हेल्दी एंड अ लॉफुल सोसाइटी. भारत देश के सर्वप्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें किस समाज का ड्रीम रखना है. उन्होंने कहा था कि वी हैव टू गिव सर्विस टू आर नेशन, एंड ही सेड दैट द सर्विस टू आर नेशन इज द सर्विस टू मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग. दैट कैन बी डन by eradication of poverty, ignorance, disease and inequality. Unhone kaha, the ambition of the greatest man of our time, apostle of peace, Mahatma Gandhi, is to wipe every tear from every eye. To kya hum sabhi ke aankh mein se aansu poch sakte hai? Yeh to sambhav hoga hi nahi, itne sare log mein. But unhone ek bahut hi mahatva ka shabd kaha tha, कि जब तक इंसान के आंख में से आंसू हम नहीं पोंछ लेते ये काम पूरा नहीं होगा. सो द लॉफुल सोसाइटी विच वी ड्रीम ऑफ. और जैसे कि कल निधि बेन ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा था, उन्होंने भी सपना देखा था व्हाट इज द टाइप ऑफ सोसाइटी वी शुड हैव. और उन्होंने बहुत ही अच्छे वाक्य में ये बताया था कि वी शुड एम एंड वी शुड ड्रीम ऑफ अ सोसाइटी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic wall, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom, let my country awake. So definitely isme jurist bahut hi aham role nibha sakte hain. Ye jurist conference jo 4 din ki hai, मेरी हम एज अ कोऑर्डिनेटर एंड रिप्रेजेंटिंग ऑल अवर जूरिस्ट कमिटी मेंबर्स कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी सेशन अटेंड करें. और आप देखेंगे कि योर टेक अवे मैसेज विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी एंड अ लॉफुल सोसाइटी. थैंक यू. ओम शाह.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि बेन ओझा जी. तो आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस के कहे या अपने जीवन अपने लॉफुल सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पष्ट हो गए. तो अभी हम कहते हैं लक्ष्य अगर स्पष्ट हो तो लक्षण आ जाते हैं, लक्ष्य अगर स्पष्ट हो तो लक्षण आ जाते हैं, प्रयास की दिशा ठीक हो तो सक्षम हो जाते हैं, नियम और संयम रोड़े नहीं सोपान है, नियम और संयम रोड़े नहीं सोपान है, जमीन से जितना जुड़ाव है उतनी ही ऊंची उड़ान है, जमीन से जितना जुड़ाव है उतनी ही ऊंची उड़ान है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस को आशीष देने के लिए आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो जोन है उसकी आप इंचार्ज हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से आप इस विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। जैसे कहते हैं कि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है पेड़ उतना ही मजबूत और सुखदायी होता है, तो परमपिता परमात्मा द्वारा रचित इस यज्ञ के आदि रत्न आत्माओं का आप आत्माओं में से आप एक उदाहरण है। मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस महासम्मेलन को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय संतोष दीदी जी।
ओम शांति। सब बैठ करके बड़े ध्यान से वर्तमान समय की क्या सिचुएशन है ये सुन रहे थे, परंतु सिर्फ सुनते ही नहीं, हम सब ये देखते हैं कि आज सोसाइटी की क्या हालत है, जो लॉ और ऑर्डर है वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन ये हालतें खराब होती जा रही। और हम सभी की यही इच्छा है कि जैसी ये सोसाइटी भारत की सारे विश्व में जिस संस्कृति का गायन है, जो महान संस्कृति है, उस संस्कृति को हम फिर से स्थापन करें, फिर से हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी जो है वो वापस हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाए। हर एक व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशनल का होने दो, कोई भी छोटा या बड़ा कैसा भी व्यक्ति हुए, हर एक को यही चाहता है कि हमारा जो समाज है वो सदा के लिए सुखी रहे, समृद्ध रहे और आदर्श रहे। इच्छा तो सभी की बहुत ऊंची है, उस इच्छा को पूर्ण करने की हर एक कोई अपनी अपनी तरफ से मेहनत भी जरूर करता है। अगर समाज को सुधारना है तो हमें अपने से ही चालू करना पड़ेगा, क्योंकि समाज ये व्यक्तियों से बनता है और हम सब इस समाज के एक घटक है। इसीलिए हमें अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज कोई भी बात जब दूसरों को बोलते हैं, अगर वो बात हमारे जीवन में हम धारण कर लेते हैं तो बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें देखकर से दूसरे स्वतः ही सीखते हैं। तो इसीलिए ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर सचमुच हर एक व्यक्ति 24 घंटे में से, जो सारे दिन के 24 घंटे हैं, उसमें से एक घंटा अगर अपनी आत्मोन्नति के लिए लगावे, अपना थोड़ा सा समय श्रेष्ठ बनने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन करें, तो जरूर जीवन जो है वो परिवर्तन में आ सकता है। और हमेशा कहा जाता है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो जग भी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें सोसाइटी को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाना है तो पहले हमें खुद को बनना पड़ेगा। और आप सभी तो जज है, वकील है, सब लॉफुल है, आप लोग सब यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं सब कायदे कानूनों को अच्छी तरह से जानते हैं, आज के कायदे कानूनों को और ईश्वरीय कानून को भी जानते हैं हम सभी, कि आज का मनुष्य औरों से, मनुष्यों से अपने को छुपा सकता है पर उससे कोई नहीं छुपा सकता है, वो हमें सदैव देखता रहता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने की आवश्यकता है। तो हमारी आप सभी को यही विनंती है कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से अगर इतना प्रण करके जाते हैं, क्योंकि तीर्थ पर जब जाते हैं तो कोई ना कोई जरूर प्रण करके आते हैं, कोई ना कोई ऐसा अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करके आते हैं कि हमें अभी क्या करना है। तो अगर ये बुद्धि में रख के जाएंगे कि हम खुद बदलेंगे तो औरों को बदला सकेंगे, क्योंकि सिर्फ संगोष्ठी करने से, कॉन्फ्रेंस करने से, आपस में चर्चा करने से ये दुनिया बदलने वाली नहीं है, हमारे परिवर्तन से ही दुनिया बदलने वाली। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहता है कि आप स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, सारे समाज के लिए शुभ चिंतन करो और सभी के शुभ चिंतक बन करके अपने में परिवर्तन ला करके औरों में परिवर्तन लाने के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन जाओ। वैसे तो समाज की दृष्टि से आप सभी आदर्श है ही, परंतु जो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, जो आध्यात्मिकता चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता ये एक बहुत बड़ी लाइट भी है और माइट भी है, हमें कर्मों की गहन गति भी समझाती है और उसके साथ साथ कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कैसे सर्वशक्तिवान से ली जाती है उसकी युक्ति भी बताती है, और उसके साथ साथ के साथ साथ हमें उसकी विधि बताने के बाद वो हम अपने जीवन में धारण करके ईश्वर से ताकत लेके अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते। तो जरूर ये जो कॉन्फ्रेंस रखी हुई है इससे सभी को बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि इतने जब इकट्ठे हुए आकर के तो इतनों के जीवन का परिवर्तन, अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। एक एक व्यक्ति के पीछे बहुत लंबी क्यू होती है, अगर हम बदलते हैं तो हमारे पीछे सारा जग बदलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अनेकों को इसका लाभ देते जाएंगे, ऐसी हमारी आप सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना है। आपकी ये कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत सक्सेस हो और आपका जीवन जो है वो सदा के लिए सुखी और शांत हो, ये हमारी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी ने आप सभी से एक प्रण करवाया, क्या प्रण करवाया? हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। सभी बोलेंगे हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। इसलिए वैसे भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मोटो है व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। लेकिन हमारा होता क्या है, हम सोचते हैं दीदी हमारे बीच से अभी प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि बहुत आवश्यक उनको कार्य है, फिर भी समय देकर हमारे बीच में आए हैं, इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन करते हैं। तो हमें स्वयं को बदलना है और फिर उसी से विश्व बदलेगा। वी वॉन्ट अ सोसाइटी विच इज हेल्दी, वी वॉन्ट अ सोसाइटी विच इज हेल्दी। सो फॉर दैट वॉट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू हील आवर सेल्फ, हील थाइसेल्फ, हेल्दी विल बी सोसाइटी। वी वॉन्ट अ सोशल सिस्टम विच इज लॉफुल, लर्न टू लव योर नेबर, लाइफ वुड बी जॉयफुल। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी, जो आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन हैं। आप अति व्यस्त हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं, उनका भी प्रोग्राम कल से ही आरंभ हो चुका है, फिर भी हम सब के बीच में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं। तो मैं हिसाब से अनुरोध करूंगी, आज का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले मैं भाई साहब का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की सोसाइटीज हैं, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी, उसके आप सेक्रेटरी हैं। भाई साहब पिछले 60 वर्षों से यहाँ समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा भाई साहब की उम्र 90 प्लस है। कैन यू बिलीव? मैं पहले बहनों से अनुरोध करती हूँ, भाई साहब का सम्मान करेंगे शॉल और बैज द्वारा। भाई साहब आज भी 18 घंटे से अधिक समय पर सेवा करते हैं, दिन में 5 बार जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं वो पढ़ते हैं। आप ताली तो बजाइए, इतनी बड़ी उम्र में वो आज भी इतना अध्ययन करते हैं सब। और ये राज्यों की शक्ति का एक कमाल है, राज्यों करने से कैसे हेल्दी लाइफ हो जाती है उसका आप एक ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे नहीं कि फिजिकल एलिमेंट्स नहीं आती है, लेकिन आत्मा अंदर से इतनी मजबूत और इतनी शक्तिशाली होती है कि सभी बातों को वो ओवरकम करते हैं। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस समारोह का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी।
ओम शांति। आज के इस ज्यूरिस विंग के इनॉग्रल सेशन पर मंच पर सुशोभित आदरणीय पुष्पा बहन जी चेयरपर्सन ज्यूरिस विंग, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पूजा हरि जी चीफ गेस्ट आज के सत्र के, और मंच पर सुशोभित अन्य ऑनरेबल स्पीकर और गेस्ट, और सामने हमारे इतनी सारी संख्या में पधारे हुए न्यायविद, मैं देख रहा हूं कि आज का विषय है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज। तो जब हम आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं या शक्तियों की बात करते हैं, तो मानव ने समाज सुधार के लिए अनेक लॉज बनाए हैं और बनाते रहते हैं और बनाते जाएंगे। यानी समाज में ये चीजें लाने के लिए परमानेंट एक लॉ मेकिंग बॉडीज हैं जो कानून बनाती ही रहती हैं, बनाती ही रहती हैं, बनाती ही रहती हैं। जब हम स्पिरिचुअल पावर्स की बात करते हैं तो एक ही स्पिरिचुअल लॉ है, केवल एक, हम सब भारतवासी हैं, जानते हैं, और उसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा। एक लॉ ऑफ कर्मा सारे लॉज को अपने में समेटे हुए है। लॉ ऑफ कर्मा बड़ा सिंपल है, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। सिंपल लॉ है। अब देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर ये लॉ ऑल इंक्लूसिव है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ है और हम सब सोल्स हैं, यानी स्पिरिट्स हैं। अब आप देखिए, मोटे रूप से अगर हम इस कानून लॉ को अन्य कानूनों से मिलाएं, पहली बात तो ये है कि अन्य जितने भी कानून हैं वो गलती करने की, जुर्म करने की, अपराध करने की सजा देते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करे उसका रिवार्ड नहीं देते। ऐसे कोई कोर्ट नहीं है जहां कोई अच्छा काम करने वाला जाए और कोर्ट कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको कुछ रिवार्ड भी दिया जाता है। यानी वो वन साइडेड हैं, पनिशमेंट ही देते हैं गलती के लिए। दूसरी बात क्या है कि उन कानूनों को तोड़ा जा सकता है और उनकी द्वारा न्याय लेने के लिए नीचे की कचहरी, ऊपर की कचहरी, टॉप पर सुप्रीम कोर्ट रखा गया। पर ये लॉ ऑफ कर्मा जो है ये दो तरफा है, ये ऑटोमेटिक है, इनइलेक्टेबल है, और ये आपको अगर गलत करने की सजा देता है तो आपको सही करने का रिवार्ड भी देता है। तो कितना सारा फर्क हो जाता है। दूसरी बात, अन्य कानून से लोग बच सकते हैं, पर इस कानून से कोई नहीं बच सकता। अगर हम ये बात ध्यान में रखें तो शायद ही कोई व्यक्ति अपराध करेगा। अब ब्रह्मा कुमारीज में खाली यही बात सिखाई जाती है, तो जिसको लोग क्राइम प्रिवेंशन कहते हैं उसको तो छोड़ो, अच्छा सद्व्यवहार, सदाचार से व्यक्ति का जीवन और ही प्रफुल्लित होता जाता है। अब बात यह है कि ऐसा शानदार एक कानून होने के बावजूद भी अब मनुष्य इतने कानून बनाते रहते हैं, लेकिन हम देखते क्या है कि गलत काम का रिजल्ट होता है दुख, अशांति, भय, चिंता, तनाव, पूरी लिस्ट है। और आज क्योंकि हम सब अनेक प्रकार के दुखों से, अशांति से, भय से, चिंता से, असुरक्षा से, अकाल मृत्यु से पीड़ित हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दुआ की वाली बात तो नहीं हो रही। हम कानूनों के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं, उसको अमेंड करते जा रहे हैं, जो भी करते जा रहे हैं, पर नतीजा क्या है। अब देखना यह है कि जब हमें लॉ ऑफ कर्मा का ज्ञान है, सुना तो हुआ है, फिर हम धोखा क्यों खाते हैं। धोखे खाने का भी एक कारण है। आज का व्यक्ति सोचता है अगर कहीं परमाणु शस्त्र गिर जाए या कोई बम फट जाए या अर्थक्वेक ही आ जाए तो क्या अच्छे लोग बच जाते हैं। जब भूचाल आता है या फ्लड आता है या कोई बम गिरता है, उसमें तो सब प्रकार के लोग मर जाते हैं। तो वो सोचते हैं लॉ ऑफ कर्मा का क्या फायदा, जब हम बच ही नहीं सकते क्या फायदा। और इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे समाज में, सारे मानव समाज में, जिसको हम एक शब्द में भ्रष्टाचार कहते हैं, उसके ब्रांचेस गिन लो तो भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, ये हम क्यों करते हैं। कि हम मोटे रूप से देखते हैं तो जो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर रहा है उसको बहुत साधन है, उसके बंगले बन गए हैं, कारें आ गई हैं, साधन बन गए हैं, सम्मान प्राप्त करता है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, और जो बेचारा सत्य पर चलता है, लॉ पर चलता है, वो तो बेचारे को दो रोटी नसीब नहीं होती। तो वो कहते हैं कि लाभ कर्मा क्या होता। अब बात यह है कि लाभ कर्मा किसी फिजिकल बात को नहीं छेड़ता, वो आत्मा का लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, और हमारा विषय भी है स्पिरिचुअल पावर। लॉफ कर्मा ये नहीं कहता कि आप शरीर नहीं छोड़ोगे। जो जो लोग धोखा खा के कहते हैं कि अच्छे लोग भी मर जाएंगे, शरीर तो व्यक्ति को वैसे भी छोड़ना है, अर्थक्वेक आए या ना आए, बम गिरे या ना गिरे, फ्लड आए या ना आए, तो लोग इसको धोखा खा जाते हैं कि अच्छा व्यक्ति जो भला धर्म करने वाला है उसकी मृत्यु नहीं होगी, मोटे रूप से ये सोचते हैं। लेकिन मृत्यु तो, मृत्यु का कोई लिंक इस चीज से नहीं है। ये जरूर है फ्लड आता है तो मास डेथ्स हो जाती हैं, बम गिरता है तो बहुत से लोग एक टाइम पर मर जाते हैं, लेकिन कोई मरता तो है नहीं। स्पिरिचुअल लॉ कहता है कि आप आत्मा है, आत्मा तो अमर है, और आत्मा शरीर के द्वारा इस जन्म में भी सुख दुख भोगती है और संस्कार ले जाके अगले जन्म में भी भोगती है। इसलिए ये जो धोखा हम खाते हैं कि अच्छे लोग भी नहीं बचते प्राकृतिक आपदाओं से या युद्ध आदि से, ये गलत है। दूसरा कि भाई मौज कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, इसको भी लॉ ऑफ कर्मा कहता, गौर से देखिए। पहली बात तो कोई गलत तरीके से मौज करता है तो ऊपर से मौज लगती है, उसकी शांति, उसकी सत्यता, उसका कहते हैं संतुष्टता खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब किसी का जवान बेटा मर जाता है, किसी को कैंसर का रोग हो जाता है, जब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तब व्यक्ति नहीं सोचता, बल्कि उल्टा सोचता है, अच्छा हुआ मैंने गलत पैसा कमाया हुआ है, मैं अच्छे हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे सोचता है। लेकिन ये दिक्कतें आई ही ना, हमें परेशानियां हो ही ना, अगर हम लॉ ऑफ कर्मा पर चले। अब दूसरी बात आती है, पहले तो कहा गया है कर्म की गति न्यारी है, कर्म की गति को समझना चाहिए, और इस लॉ को एक बार व्यक्ति समझ जाए तो किसी प्रकार से भी ये सोचेगा अगर मुझे अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, शांति का जीना है, तो मुझे अपने ना सिर्फ कर्म बल्कि अपने संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क को सही करना होगा। अब क्या आज की स्थिति में अगर आपको ये पता लग भी जाए कि हाँ जी हमें कर्म फिलॉसफी, कर्म का लॉ एक ही है, उसको फॉलो करना है, क्या हम कर पाते हैं? क्योंकि ओवर द पीरियड हमने इसको तोड़ा हुआ है बहुत काल से, हम अपने आप को आत्मा मान के चलते ही नहीं, शरीर मान के चलते हैं, जबकि शरीर मेरा है, शरीर माध्यम है, तो गलती पे गलती होती जाती है। हम साधनों को सुख मानते हैं, ये नहीं समझते कि सुख के लिए साधन होते हैं, अगर आत्मा में गड़बड़ है तो कितने भी साधन इकट्ठे कर लो कोई सुख नहीं है। आज हम इस हालत में पहुंच चुके हैं कि सारी मानवता, जिसको कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल में दो तरह की बुद्धि होती है, विनाश काल प्रीत बुद्धि भी होती है और विपरीत भी। आज सारी मानवता आप जानते हैं कि अपनी ह्यूमन रेस को ही खत्म करने की होड़ में है, लड्डू तो बना नहीं रहे, परमाणु शस्त्र बना रहे। अब कारण क्या है कि ओवर द पीरियड जब हम एक लॉ को तोड़ देते हैं तो हमारे ऊपर उसका जो अपराध है वो ना चाहते हुए भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, सूक्ष्म रूप से बढ़ता जाता है। शुरू शुरू में दिखाई नहीं देता, जैसे कोई रोग होता है अंदर जब बहुत बढ़ जाता है, हड्डी तक पहुंच जाता है, और यहाँ तो कहेंगे आत्मा तक पहुंच जाता है, तो फिर उसकी सजा भी मिलती है। तो आज क्या हो गया है, जो हमको सिखाया गया ब्रह्मा कुमारीज में कि हर आत्मा पांच प्रकार के वीकनेस से पीड़ित है, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं। भगवत गीता में पहले तो कहा गया तुम आत्मा हो, और दूसरा कहा गया कि तुम पांच विकारों को जीतो। तो जब हम इन पांच विकारों से ग्रसित हैं, हमारे में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बुरी नजर है, तो आत्मा कमजोर हो गई है। अब कमजोर आत्मा कर्म लॉ को जब भी अप्लाई करने की कोशिश करती है तो उसके एक्शंस, उसके थॉट्स टेंटेड हो जाते हैं, चाहे वो एंगर से हो जाए, चाहे ईगो से हो जाए। अब इसका इलाज जिसको कहा गया स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, संतोष बहन जी आपको अच्छी तरह बता गई हैं कि पहले तो हम अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को समझें कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। फिर इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, कि मेरे में शक्ति हो उसको धारण करना है। क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है ना ठीक क्या है गलत क्या है। व्हाट इज नॉलेज, नोइंग राइट एंड रॉन्ग, अच्छा क्या बुरा क्या, ये तो हम जानते ही हैं। फिर और कौन सा ज्ञान ब्रह्मा कुमारी हमें देने वाली है। ऐसे तो दुर्योधन भी कहता था मैं अच्छा और बुरा जानता हूं, पर कहता था मेरी नीयत अच्छी नहीं है। आज देखिए, हम अच्छा और बुरा तो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद क्या हम बुरे को छोड़ पाते हैं और अच्छे को कर पाते हैं, क्वेश्चन ये है। इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। तो सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं, गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता था। एक ही प्रकार, अच्छा बुरा नहीं, अच्छा ही अच्छा। इसलिए हम आपको शॉर्ट में एक फॉर्मूला बताते हैं जो ब्रह्मा कुमारी में हमने सीखा है। और वो फॉर्मूला सिंपल है, अच्छा सोचो, भला सोचो, जिसको कहा जाता है शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, शुभ चिंतन करो, और उसके लिए प्रभु चिंतन करो। जब हम ग्रीन चश्मा पहन लेंगे तो हमें हरा ही हरा नजर आएगा। तो वन साइडेड केवल हमें अच्छा ही सोचना है, ये इसका तोड़ है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके आपको जो प्रोग्राम चलेंगे यहाँ बहुत मदद करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आदरणीय दादी जी पधार चुके हैं। हम सभी खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से दादी जी का स्वागत करेंगे, और बहनों से अनुरोध करते हो कि दादी जी का सम्मान करें। से अनुरोध करूंगी कि अभी हम सभी कैंडल लाइटिंग के लिए आगे आएंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छी से बात हमें सिखाई कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है और कैसे हमें अपने कर्मों को सुधारना है। सभी के पास कर्मों का ज्ञान है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में क्यों दिक्कत आती है, ये भी भाई साहब ने बताए। अभी हम सभी एक प्रण करते हैं कि हमें अपने मन के साथ साथ विश्व का भी अंधियारा दूर करना है। जैसे भाई साहब ने बताया कि सदव्यवहार सदाचार से जीवन अच्छा होता है, तो इसी सदव्यवहार और सदाचार को अपने जीवन में हमें धारण करना है, यही एक लक्ष्य लेते हैं इस दिए के सामने। और मैं सभी हॉल में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ, आप सभी के पास मोबाइल है तो आप मोबाइल की लाइट कैंडल लाइट जलाएंगे, तो कैंडल लाइटिंग के समय सभी से अनुरोध है मोबाइल की लाइट जलाएं और इस कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग दें। जलाएं दिए पर ध्यान रहे इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। दादी जी के आने से हमारा यहाँ का एक माहौल जो है बहुत उमंग उत्साह और खुशियों भरा हो गया है। हम फिर से एक बार करतल ध्वनि से दादी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एम्ब्रेसिंग स्पिरिचुअल पावर फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ वेल बीइंग इंटेग्रिटी एंड राइटियसनेस। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू लिव ऑथेंटिकली, मेक एथिकल choices and work towards collective efforts welfare. By harnessing this inner strength, we pave the way of for a healthier, more lawful society where every individual's potential is nurtured and respected. So abhi aaj ke is karyakram ka mukhya atithi का जो वक्तव्य है उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पूजाहारी जी, चेयर पर्सन ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन भुवनेश्वर। हमने आपके विचार कल भी सुने और अभी मैं आमंत्रित करूंगी टू शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम विद अस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पूजाहारी जी।
ओम शांति। मैं मेरा वक्तव्य प्रदान करने से पहले आप सब महान आत्मा को यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मंच पर विराजमान है, मंच के नीचे विचार विराजमान है, सबको मेरा बहुत बहुत प्रदेश का गवितम प्रदेश से आपका प्रणाम करता हूँ। आज का ये इनॉग्रल सेशन में मंच पर उपस्थित हुए अभी दादी रोतन मोहिनी जी, जिसको समको आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको मेरा प्रणाम। मंच में उपस्थित आज का ये जूरिस्ट विंग का जो चेयरपर्सन है न्यू दिल्ली, जो जूरिस्ट विंग का चेयरपर्सन है राजवग्नि बी के पुष्पा देवी, जूरिस्ट विंग का वाइस चेयरपर्सन बी डी राठी साहब, जो इंदर से मेरा ब्रदर बी डी राठी साहब, जो भी एक न्यायाधीश थे, जो कि उनका यहाँ पर वक्तव्य प्रदान करके चले गए, उनका थोड़ा हल्का सा शारीरिक अस्थावशत काल भी हमारा उपस्थित नहीं पाए, लेकिन आए थे राठी भाई ने। यहाँ का आज जो एम एंड सब्जेक्टिव्स में हमको मंच पर उपस्थित हैं रश्मि ओझा जी, डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी मौसमी ओझा जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पुष्पा दीदी जी जिसका कमांड मेरा ऊपर रहता है हरदम, है ना भाई साहब, आपको जरूर आना, वही वो भी मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारी का जो थे अभी उनका वक्तव्य देते हुए मंच से चले गए हैं, राजयोगी बी के ब्रिजमोहन आनंद जी। मंच पर उपस्थित राजयोगिनी संतोष दीदी जी जो मुंबई से पधारे हैं, अभी यह मंत्र में उपस्थित हैं कुमारी भूमि अंबरनाथ जी, कुमार भूमि अंबरनाथ, एन जिंदल जी जो भी हमारे बेरादरी का हैं, जो भी फरमोर हाई कोर्ट थे, काल भी मेरे साथ थे, ब्रदर जगत किशोर प्रसाद जी जो डायरेक्टर डेमरा फ्रेट लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं, दिल्ली से पधारे हुए हैं, ब्रदर बीके संदीप अग्रवाल जी, नाथवाल भाई राजयोगी नाथवाल भाई जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जुरिस्ट विंग का, जो कि मेरा गाइड है इस जुरिस्ट विंग से, मेरे को जो जुड़ा लगा है ब्रह्म कुमारी से, जिसका कारण वसत मेरे को यहां बार बार आना होता है और मेरे को सब जगह पर लेके जाते हैं, श्रद्धा बहन जी जो कार्यक्रम को अच्छा से संचालित करते हैं, आपको समस्त को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरे को कुछ बोलना है इसके बारे में, मेरे को आज मुख्य अतिथि बना गया है, काल तो मुझे बोलना था बोल दिया, फिर भी आज मुख्य अतिथि हैं, कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना मेरा सब कुछ पढ़ लिखता हूं लेकिन मैं बेसिकली वर्किंग जज हूं, काम करता हूं बस 24 घंटा से, मेरे अभी भी काम चलता है, हरदम काम में रहता हूं, कभी कभी समय मिल जाता तो कोई अनुष्ठान में जाता हूं, वहां कुछ बोलने के लिए पड़ता है लेकिन बोलते हैं जो मन में आता है वो बोल लेते हैं, कभी कभी कहीं भूल भी हो जाता है, फिर भी आप लोग सब महान विभूतियां यहां पर उपस्थित हैं, यहां पर कितने कितने महान उपाध्याय विभूतियां आके गए हैं, मैं जो मेरा मन में है मेरा विचारधारा रखूंगा। कल तो बोला था स्पिरिचुअलिज्म क्या है, क्यों स्पिरिचुअलिज्म का जरूरत है, ये कुछ बोलेंगे। श्रद्धा दीदी जी तो पहले उनका संचालित करते हुए आपको बोले, वकील लोग क्यों चाहेंगे अर्डरली सोसाइटी, उनका प्रोफेशन का यह है, ये बात वही नहीं है, वो फिर समझा दिए क्यों इसके लिए जरूरत है सोसाइटी के लिए। जीवन का सभ्यता का शुरू हुआ अडल्टी सोसाइटी, अगर नहीं होता तो सभ्यता आज इतना दूर नहीं आता। मनुष्य तो पहले जंगल में रहता था, जानवर की तरफ रहता था, अपनों के बीच लड़ाई होता था, खाने के लिए इधर उधर घूमता था, लेकिन जब आग का कंट्रोल करने सीखा उसका जीवन का बेहतर होने लगा। पहला आदमी जो आग को कंट्रोल करने सीखा उसके बाद उसको जीवन का उसके उसका उन्नति हुआ, उससे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आज इतना दूर चले आए हैं, हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी चले गए हैं। ज्ञान का तो बहुत उन्नति हो गया है, नॉलेज सबके पास है, आजकल नॉलेज द पावर बोलते हैं, लेकिन क्या नॉलेज में सिर्फ हम बच सकते हैं सोसाइटी में? मेरा नॉलेज ज्यादा है, मैं ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं, मैं अच्छा लिख सकता हूं, आज पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन उसी से क्या चलेगा? क्या उसी से अगर नॉलेज से सब चलेगा तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और नॉलेज का भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का नॉलेज का जरूरत भी नहीं है, उसको इसे ट्रेंड कर देंगे वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन पृथ्वी ये जो मनुष्य है इसको नॉलेज से सिर्फ चलना नहीं है, विवेक नॉलेज के बाहर और कोई है, ये अपना विवेक है, इसका बीच में हरदम द्वंद चलता है कि क्या आपका बुद्धि एक बोलता है विवेक एक बोलता है, अगर आप बुद्धि का हिसाब से काम लेंगे तो हरदम गलती की ओर जाएंगे, लेकिन आपका बुद्धि के साथ विवेक को बैलेंस करना है। विवेक में अगर काम लेंगे तो ठीक सब रहेगा। विवेक क्या बताता है, हमारा स्पिरिचुअलिज्म क्या बताता है? नॉलेज में तो बहुत लिखा होता है, सब बोला जाता है, लेकिन विवेक में क्या लिखता है, विवेक क्या बोलता है? विवेक हरदम दूसरा कुछ बोलता है, दूसरा कुछ आवाज देता है। हम विवेक के हिसाब से काम करना है, जिसको क्या बोलता है, फेयरनेस, दूसरा प्रति संवेदना, कुछ अच्छा करना, यह है स्पिरिचुअलिज्म का मेन स्पिरिट है। बहुत सारे गुण हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म का है।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
स्पिरिचुअलिज्म यही है, स्पिरिचुअलिज्म है। जैसे आदिशंकर ने बोला था, भोज गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भदमूढ़ संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुख करणे। आप कितना भी ज्ञान हो आपके पास बहुत सारे नॉलेज हो, मैं बहुत बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे बोल सकता हूँ, मेरा पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत बोल सकता हूँ, ये सब कुछ काम में नहीं आएगा। अगर परमपिता का आप स्पिरिचुअल ट्रू सेंस में नहीं रहेंगे तो ये कुछ काम नहीं आएगा। आपका लास्ट टाइम में वही ही आपका काम में आएगा। भगवान की शरण, परमपिता का शरण, वही आपके काम में आएगा। स्पिरिचुअलिज्म जो है, मैं बोला था, फेयर रहना, सबको अच्छा सिंपाथी रहना, सबका अंदर में है जो बोले, ये इसको जागृत करना है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय का काम यह है, सबका अंदर में काल भी बोला था ये जो हमारा अच्छा गुण है इसको कैसे जागृत करेगा। सब विंग में इसे काम चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को भी बुलाते हैं, जुरिस्ट विंग को बुलाते हैं, इंजीनियर विंग को बुलाते हैं, एजुकेशन विंग को, सबको बुला के सब प्रोफेशन में जितना है कॉमन पब्लिक को भी जाके यही सिखाते हैं कैसे हमारा अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म कैसे अवेकनिंग होगा, हम कैसे मनुष्य एक दूसरा शक्ति के साथ जो ऊपर वाला है कस्मिक पावर के साथ जो हम परमपिता के पावर बोलते हैं उसके साथ कैसे हमारा जुड़ाव होगा, यही स्पिरिचुअलिज्म में सिखाया जाता है। ये स्पिरिचुअलिज्म अगर रहेगा तो सोसाइटी हेल्दी बनेगा। आपको यही स्पिरिचुअलिज्म क्या बोलता है, स्पिरिचुअलिज्म और एक मूल मंत्र है, पहले से है, वेद व्यास उनका जितना अठर पुराण है उसमें सब बोले हैं, क्या है वो धर्म, वो धर्म के बारे में बोले हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म नथिंग बट स्पिरिचुअलिज्म उसके बारे में बोले हैं, क्या बोले हैं ने भारचू क्या है, धर्म क्या है, सबका किसका बुरा नहीं करना, सबका भला ही करना, डोंट हर्ट अदर्स, हर्टिंग अदर्स इज पाप एंड हेल्पिंग अदर इज वर्चू, जो मैं पहले भी यहां एक बार बोला था कि इसको स्वामी हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे वो भी बोले व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ धर्म, धर्म इज नथिंग बट परोपकार, अधर्म इज परपीड़ना, यही सिंपल चीज है। ये कब आएगा अपने मन में, जब हम स्पिरिचुअली एक होंगे, जब अपना को हम मनुष्य के अंदर तो सब है, सब बिस्टली कैरेक्टर भी है, सब सब चीज है, रोग है, क्रोध है, सब आएगा, लेकिन इसका और कैसे हम जाएंगे यही है स्पिरिचुअलिज्म। इसको सिखाता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत दिन से, और इसीलिए जूरिस्ट विंग में हम लोग जो हैं ह्यूमन प्रॉब्लम को कल बोले थे डील कर रहे हैं जूरिस्ट विंग में, ये सब सिखाया जाता है कोर्ट कचहरी में, कैसे आप स्पिरिचुअल रह के भी अच्छा न्याय दे सकते हैं, इसमें किसी का प्रोफेशन का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोफेशन भी चलेगा लेकिन आप न्याय भी दे सकते हैं, आपका दोनों आएंगे, कोई आदमी का ठीक है कोई ठीक नहीं है, दोनों तरफ से आप करते हैं, जज का ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे काम हम नहीं करना, हम कुछ बनावटी हमको नहीं करना है, जो है वही हम बता देंगे, उसके बाद जो जज का न्याय होता है होने दो, वो होने से के बाद भी जो बोले अभी रंगनाथ मिश्र के बोले ये तो जज हो जाता है बाहर दुनिया में हमको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है बोलता है मेरे साथ अन्याय हुआ, जो उसको मिल जाता है वो बोलता है नहीं नहीं जज ने अच्छा न्याय दिया, लेकिन जो बोले प्रोविडेंशियल जस्टिस वो आदमी का जो बोले प्रोविडेंशियल जस्टिस हो जाता है, किसी ना किसी तरफ से प्रोविडेंशियल जस्टिस होता है, कोई आदमी बोलता है खुल के कोई आदमी नहीं बोलता है, लेकिन सब हम फील करते हैं कि प्रोविडेंशियल जस्टिस है, आप जैसे करनी ऐसी भरनी, जो बोले हमारा ब्रिजमोहन आनंद जी जैसे करनी ऐसी भरनी, ये जुग जुग से है, आप जैसे काम करेंगे जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, आप जैसे काम करेंगे ऐसे ही आपको मिलेगा, आप उसी से ज्यादा आप जो बोलते हैं प्रोविडेंशियल जस्टिस वही है, वो जस्टिस सिस्टम अलग है, आप यहां से किसी को कर देंगे कितना भी आप किताब आइन का किताब बना लें, अगर आदमी ठीक नहीं रहेगा तो ये सब किताब कुछ काम नहीं देगा, अब जितना है उसको बोलते हैं लेजिटिमाइजेशन ऑफ लॉ, हम तो आइन बना लेते हैं लेकिन लेजिटिमाइजेशन ऑफ लॉ कब होगा, जब आदमी ठीक बनेगा, लेजिटिमाइजेशन ऑफ लॉ क्यों क्या होता है, लॉ तो बना लेते हैं लेकिन लॉ का सैंक्शन नहीं रहता है, सैंक्शन कैसे रहेगा, हम देखते हैं हमारा सामने एक आदमी मर्डर करते हुए वो जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में खलास हो जाता है, हम देखे वो मर्डर किया है लेकिन वो खलास बन जाता है, उसको जज खलास कर देता है, एविडेंस नहीं है,
इसीलिए क्या होता है, जो आदमी एक थापड़ दिया ना, वो तो एक मर्डर करके खलास हो गया, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, नहीं उठता है, मेरे को थापड़ दे दिया, जज ने वार्निंग दे दिया कि तुम क्यों थापड़ दिया, मेरे को छोड़ दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है केस और जाके बोलता है कि सर मैं निर्दोष हूं, खुद जनता है, क्यों, वो देखा कि जो मर्डर किया वो तो खलास हो गया, मैं तो एक थापड़ लगाया हूं, मेरे को भी खलास होना है, मैं क्यों दूंगा स्टिग्मा। तो लेजिटिमाइजेशन ऑफ लॉ, लॉ तो बना लेते हैं, लेजिटिमेशन लॉ को लीगलिटी सैंक्शन नहीं है, आदमी का अंदर में अगर वो बनता, जो आदमी दोष किया है अगर उसका एक बार दंड हो गया तो ऊपर में नहीं जाना चाहिए, ऊपर में नहीं जाना चाहिए, अब जब लेजिटिमाइजेशन हो जाएगा तो लॉ को वो बोलेगा कि नहीं, उसका अगर रेवकनिंग ठीक है, अगर स्पिरिचुअलिटी है, वो बोला ने काम किया, कर दिया बुरा काम, दंड दे दिया जज साहब ने, इसको भोगना है, उसके बाद तो मैं, उसके बाद मेरा फिर मुक्त हो जाऊंगा, यही नहीं सोचता है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म अगर उसका अंदर एवकनिंग रहेगा तो कोई भूल भी कर दिया तो सोच लेगा कि मेरा ठीक है, दंड मिल गया, मेरे को यहीं रहने दो, ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, इतना लड़ाई झगड़े करने का जरूरत नहीं है। हमारा लेजिटिमेशन लॉ नहीं होता है, इसी के लिए लेजिटिमेशन लॉ कैसे होता है, आप सोच लीजिए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने से पहले आपको क्या कोई देखता है क्या, जूता आप खुद उतार लेते हैं, नहीं नहीं भगवान के पास जाना है, मेरे को जूता पहन के नहीं जाना है, आप कोई भी नहीं रहेगा रात को, अब मंदिर जाएंगे तो जूता उतार के जाएंगे, कोई नहीं देखेगा आपको, कोई बोलने का जरूरत नहीं है, क्यों, आपका अंदर में वो एवकनिंग है, नहीं भगवान के पास जूता लेकर जाना ये गुनाह है, ये ठीक काम नहीं है। मेरे को वहां पर वो लॉ लेजिटिमाइज हो गया, वो कोई देखे ना देखे आप वही काम करते हैं, लेकिन हमारे लॉ में वो कोई नहीं देखता है, कोई देखा नहीं तो मेरे को चलो इसका ये चीज पकड़ के ले जाते हैं, कोई तो देखा नहीं मेरे को, हम ऐसे चले जाएंगे, लॉ है किसका चीज का आंख नहीं लगाना है, किसका चीज दूसरा से किसी का चीज नहीं है। तो लेजिटिमाइजेशन ऑफ लॉ तब होगा जब आप स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो आपको देखेंगे तो आप अच्छा से बोलेंगे कि नहीं ये मेरा चीज नहीं है, मैं नहीं लूंगा, कोई देखे ना देखे। तो स्पिरिचुअलिज्म यही आपको एवकनिंग देगा, ये होगा तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चिंता नहीं होगा, और लॉफुल सोसाइटी होगा, लॉफुल सोसाइटी होने से सभ्यता का अग्रगति होगा। और मानव जिस लिए जन्म हुआ है, मानव किस लिए जन्म हुआ है, हम यहीं से और ऊपर जाएंगे, देवत्वों की ओर जाएंगे, यही प्राप्ति होगा, ये काम हम लोग हरदम करते रहेंगे, सब अगर चेष्टा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक ही दिन में नहीं होगा, इतना सारे बुरे काम इतना दिन आए हैं, चारों तरफ है, एक आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक दिन में आप बन जाएंगे ये मत सोचना, कभी भी नहीं सोचना, आज इसको छोड़ा कल इसको छोड़ेंगे परसों इसको छोड़ेंगे, और एक ही दिन उसको आप बोल देगा तो जो जो लैंग्वेज में समझता है, हम सोचे हैं, हम इतना कितना दूर सोचे, चैतन्य देव जब आए वो भगवान कृष्ण का सब प्रचार किए तो क्या है, बंगाल में लोग मछली खाते हैं, अगर उनको जाके आप बोलोगे मछली नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये पाप है, वो नहीं होगा, वो वैसे बोले कितना दूर है, मैं उसको नहीं जानता, मैं सुना हूं, मैं सही नहीं बोल सकता क्यों, कंट्रोवर्सी कभी भी हो जाता है, मागुर मछे झोल बेटा राम हरिया बोल, वो मछली वो खाओ लेकिन राम को नाम चिंता करो, ऐसे ऐसे आपको जो जिसमें है उसको वही लैंग्वेज में आहिस्ता आहिस्ता समझ कर रहना, आप तुम बोलोगे सब छोड़ दो, ये खराब है, ये बुरा है, ये नहीं है, ऐसे करने से कभी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता सब गुण का आएगा, ब्रह्मा कुमारी में आप बार बार आएंगे। तो मेरा भी कुछ यह है, अगर सब सोचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी सब बार बार आएंगे, आप आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आपका जीवन उन्नत होगा, स्पिरिचुअलिज्म आएगा, एकोनिंग होगा, स्पिरिचुअलिज्म एकोनिंग होगा, इससे हेल्दी रहेंगे, सब रहेंगे, जीवन स्वस्थ रहेगा, सोसाइटी भी स्वस्थ रहेगा, और उससे अडरली सोसाइटी जिसके लिए जितना आईन कानून बना है लेजिटिमेशन लॉ हो सकता है, और लेजिटिमेशन लॉ हो जाएगा तो इतना रहेगा जरूर, जो आदमी हुआ है ये तो रहेगा, बीच बीच में झगड़ा होता होगा, सब आदमी तो ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन इसका संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और बढ़ के आप लोग ये अच्छे लोग बहुत हो जाएंगे, अच्छे लोग अगर बहुत हो गए जैसे अभी बुरा लोगों का संख्या बढ़ता जा रहा है, जो हमारा नहीं है हमको डरावा जाता है, जो सच में नहीं है, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये होगा, आदमी आदमी के बीच में फायदे के लिए, ईगो के लिए, अपना पावर के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, लड़वाते हैं जात जात में, देश देश में, धर्म धर्म में सब लड़ाई करते हैं, इसीलिए नहीं पावर। अगर वो अगर स्पिरिचुअल आदमी है तो वो क्या बोलेगा, मेरे को पावर का क्या जरूरत है, मैं यहां बसूं और आपके पास बैठूं, क्या मतलब है, ऊपर बैठता हूं कल नीचे बैठना पड़ेगा। इसको अगर प्रैक्टिस करेगा तो आदमी वो ठीक रहेगा, नहीं तो हम आते हैं यहां पर श्मशान वैराग्य बोलते हैं, श्मशान में जाते हैं, अरे जीवन तो ऐसे चले जाना है, क्या करना है, फिर उसके आने के बाद फिर वही वही संसार में वही बात में फिर लग जाते हैं, उसको श्मशान वैराग्य बोलते हैं। तो बार बार अगर आप आएंगे, इसको सब प्रैक्टिस करेंगे, ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, ऑर्डरली सोसाइटी होगा, हेल्दी सोसाइटी होगा। जो रिस्टोइंग को सब लोग बोलते हैं, वकील लोग ऐसा करते हैं, वो करते हैं, जज लोग ऐसा करते हैं, कोई नहीं मना नहीं करता है, लेकिन उसमें भी अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी का संख्या कैसे बढ़ेगा। तो गांधी जी भी तो वकील थे ना, गांधी जी भी तो वकील थे, वो अपनी पार्टी को कैसे वो समझाते थे, ये सत्य नहीं है, तेरा केस ठीक नहीं है, ऐसा समझाते थे ना। महात्मा गांधी वकील भी महात्मा गांधी बनाया है, वकील लोगों से भी तो महात्मा गांधी बने हैं। तो ऐसे सारे बहुत आदमी अच्छे आदमी भी हैं प्रोफेशन में, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अच्छा बनेंगे, जो ये न्याय प्रक्रिया में योगदान है, और हमारा योगदान बहुत अच्छा रहेगा तो सोसाइटी ऑर्डरली होगा और हम लोग सब अच्छा रहेंगे, संसार का भोला होगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसीलिए जो काम करता है, जो रिस्टोइंग का कॉन्फ्रेंस करता है, इसका सफल होगा। इतना बोलते हुए मैं मेरा वक्तव्य शेष करता हूं, धन्यवाद। प्रजापिता में मेरे बुलाए इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं तो आता रहूंगा, आते रहता हूं, ये तो मेरा ये हो गया है, एक बार यहां आने से जाने के लिए मन नहीं लगता है, फिर क्या करेंगे, जाना है, काम करना है, फिर दूसरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दिया है, परमात्मा ने, उसको भी करना है। ये सब बोलते हैं, मेरा जो कुछ गलत बोला तो आप लोग उसको नहीं लेना, जो मेरा सही बोला हूं वो आप लोग अगर ग्रहण करेंगे तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। इतना बोल के मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं, धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पुजारी जी, आपने कहा कि यहां से जाने का मन नहीं करता है, तो ये प्रभु का घर है, एक बार क्या यहाँ, बार बार आइए, बार बार आइए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि लॉफुल सोसाइटी के लिए किस प्रकार स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इम्बाइब करना है, क्योंकि भगवान ने कॉन्शंस विवेक तो सभी को दिया है, लेकिन उस विवेक का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। हर एक के पास विवेक होते हुए भी हम विकारों के वशीभूत होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उस विवेक को दरकिनार, उसकी विवेक की आवाज को दरकिनार करते हुए अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत कार्य कई बार करते हैं, हम सभी को अनुभव है। इसलिए कहते हैं कि व्हेन अ मर्डरर मर्डर्स अ पर्सन, फर्स्ट ही मर्डर्स हिज कॉन्शंस। कोई भी खूनी दूसरे व्यक्ति का खून करने के पहले अपने विवेक का खून करता है और उसके बाद ही वो किसी और का खून कर सकता है। तो जब प्रिय है ही तो पूर्ण होना क्या मुश्किल है, भाग्य प्रिय है सबको, परंतु वो तो बस कर्म का फल है। मुझे न्याय प्रिय है इसलिए न्यायपूर्ण बनना होगा। न्याय का अर्थ ही है विवेक। जब विवेक जागरूक होगा तभी हम न्यायपूर्ण कार्य कर सकते हैं और इसके लिए ही आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी नन्ही सी परी कुमारी भूमि, एक छोटा सा भाषण आप सभी के बीच में प्रस्तुत करेगी। अभी तक हमने बहुत बड़े विद्वानों के भाषण सुने, शब्द सुने, वर्ड्स ऑफ विजडम सुने। अभी कुमारी भूमि हमारे बीच में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी। भूमि अंबरनाथ घाटकोपर सब जोन।
ओम शांति। मेरे शरीर का नाम भूमि है। शरीर की उम्र 5 साल है और मैं कहने वाली मैं आत्मा जो इस शरीर की मालिक हूँ। मैं शरीर को चलाती हूँ। उसकी आयु करीबन 5000 साल है। इस विश्व नाटक की आयु 5000 वर्ष है और मुझे विश्वास है कि मैंने इस नाटक में शुरू से अर्थात सतयुग से देवी के रूप में पाद बजाया है और अब ये मेरा नाटक का अंतिम जन्म अर्थात लास्ट बात में इस शरीर रूपी वस्त्र कल बजा लई हूँ। मैं सदा खुश रहती हूँ। आप भी सदा और सुख और शांति जाते हो ना, तो मैं आपको कुछ बातें सुनाती हूँ। आप वो मेरे बोलने के बाद रिपीट करेंगे और रोज दिन मैं कम से कम 1-2 बार बोलेंगे, तो आप भी सदा और सुख और शांति जाओगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं निडर हूँ, निश्चित हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा शरीर एकदम निरोगी है। मैं सदा खुश हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत और प्यारे हैं। मेरा गोल स्वर्ग है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मेरी सफलता निश्चित है। मैं रोज मेडिटेशन करूंगी। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उनका दिल से शुक्रिया। मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अब समय बहुत खराब आने वाला है। हमको इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आप अपना समय निकाल कर ब्रह्मा कुमारी के संतन में जाकर लाजयुग मेडिटेशन को जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी भूमि। आप सभी से जो अफर्मेशन उन्होंने करवाए हैं, आप सभी को रोज सुबह करना है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें, ये करेंगे ना, ये अफर्मेशन रोज करना। सुबह उठते ही जब ये हम अफर्मेशन करते हैं तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है और आत्मा में वो संस्कार भरते जाते हैं। अभी मैं बहन से अनुरोध करूंगी कि एक जूरिस्ट विंग के सेवा समाचार की वीडियो है वो प्ले प्ले कराई जाए, और यीशु बहन से अनुरोध करते हो कि आप इसके बारे में बताएं।
ओम शांति। पहले तो भूमि बहन का बहुत बहुत थैंक्स, हम सब एनर्जीफुल हो गए है ना। तो जैसे कि श्रद्धा दीदी ने बोला कि अपना जूरिस्ट विंग की बहुत सारी सेवाएं हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो छोटा सा एक सेवा रिपोर्ट जिसमें हमारे चेयरपर्सन, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो सेवाएं कर रहे हैं उस सेवा की झलकियां आप देख सकते हैं। और आप भी कहीं प्रोग्राम्स ऐसे प्लान करना चाहें, क्योंकि फाइनेंशियली लेवल पे भी हमारे प्रोग्राम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं, तो अगर आप भी कोई प्रोग्राम्स ऐसे प्लान करते हैं तो आप श्रद्धा दीदी या लता दीदी से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप उसको देखिए, और उसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से जूरिस्ट विंग ने आज दिन तक सेवाएं की हैं।
तो सचमुच आप बहुत मुबारक के पात्र हैं कि आप बहुत कठिन काम कर रहे हैं। सारा समाज में अन्याय, और उसमें एक होप रहती है लोगों को, सारे लोग जानते हैं अगर फिर भी किसी को कहीं से कुछ ना मिले तो न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है।
देयर आर मेनी अमंग द लीगल फ्रेटर्निटी हु आर आल्सो इंटरेस्टेड टू डेवलप अ स्पिरिचुअल, यू नो, develop spiritually so as to contribute even more to the, not only just to the profession but to the society at large. And I think the jurists wing of the Brahma Kumari organization is doing a wonderful.
We have to create that beautiful world. So ghor kaliyug se hame satyogi duniya banani hai. We are not going to create a world only where the law and order situation is a little better. That's not the aim of life, just a little better law and order situation. No, we are going to create a world where it will be only perfection, only perfection.
Om Mana Atma, main atma hoon, aur shanti means main atma shant hoon. I am a peaceful soul.
जैसी है उसको वैसा समझना, उसको वैसा अंडरस्टैंड करना, इसमें हमें अपनी अजम्पशंस को, अपने माइंड की कंडीशनिंग को, एसोसिएटेड मेमोरीज को किनारे रखना।
प्रणाली है उसमें आध्यात्मिकता का जो स्पिरिचुअलिटी है उसका जो रोल है, उसका जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आज के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। आज जो हमें न्याय की जो परिभाषा देनी है वो सिर्फ एक पेपर जस्टिस पर लिमिटेड नहीं रह सकती है, हमें सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाना है। और जब तक हम आध्यात्मिक रूप से न्याय को नहीं जोड़ेंगे, जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो शायद हम यही फुल प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल जस्टिस इस देश के सिटीजन्स को नहीं दे।
थैंक यू यीशु बहन। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्पीच और मेडिटेशन के लिए मैं आदरणीय लता दीदी जी को आमंत्रित करूंगी। लता दीदी जी हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। तो गॉड रिक्वायर्स टू थिंग्स, प्योर लव एंड ट्रू जस्टिस। एवरीवेयर एल्स देयर इज रिलेटिव जस्टिस। वेयर प्योर लव एंड ट्रू जस्टिस एग्जिस्ट, देयर कम्स ग्रेस ऑफ गॉड। आदरणीय लता दीदी जी, वो मेरे दीदी हैं और कहूंगी मैं उनको मेरी माँ है। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और पिछले 30 सालों से यहाँ पे समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने लौकिक में बॉम्बे से ही LLB LLM किया और वहाँ पर 12 वर्ष तक सिविल साइड और मैट्रिमोनियल साइड में कोर्ट में प्रैक्टिस की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की और उसके बाद अपना जीवन पूर्ण रूपेण यहाँ माउंट आबू हेडक्वार्टर में समर्पित किया। आपकी बहुत विशेषताएं हैं, आप सबको साथ लेकर चलती हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं और कोई भी छोटा सा भी व्यक्ति हो आपके सामने वो हमेशा बड़ा होता है। सबको आगे बढ़ाने की आप में कला है और जितना दूसरे आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा खुशी इनको होती है और बहुत दयालु है, कृपालु है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इनके साथ रहती हूँ। दीदी मुझे मना कर रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगी कि ट्रू जस्टिस लाने के लिए हमें प्योर लव गॉड के साथ है तो उनके साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है आप इसके बारे में दीदी जी हमें अनुभव कराएगी। आदरणीय लता दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाएं। थोड़ा अपने आप को मूवमेंट देके फ्रेश कर लें, रिलैक्स भी हो जाएंगे। हाँ, पैर भी हिला लें, पैरों को भी हिला लें, हाथों को भी स्ट्रेच कर लें और एक दूसरे के सामने देखते हुए एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि दें, एक दूसरे को देखें ऐसे। थोड़ा जॉगिंग कर लें अपने स्थान पर ही। थैंक यू। बैठ जाएं। क्योंकि मेडिटेशन के लिए रिफ्रेश चाहिए ना, नहीं तो नींद आ जाएगी। देखो सब्जेक्ट कितना सुंदर है, स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी। हेल्थ भी चाहिए तो लॉ भी चाहिए। हेल्दी रहने के लिए लॉफुल बनना पड़ता है और लॉफुल बनने के लिए हेल्दी बनना पड़ता है। तो दोनों इक्वली चलते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक साइमल्टेनियस चलती हैं, वैसे हेल्थ एंड लॉ भी साइमल्टेनियस चलते हैं। एक है एक नहीं है। तो ना हम स्वयं हेल्दी और लॉफुल रह सकते हैं, ना हमारी सोसाइटी हेल्दी एंड लॉफुल रह सकती है। इसीलिए हमारा सिंबल ही है लॉ, लव एंड लॉजिक। बिना लॉजिक के अगर लॉ भी यूज ज्यादा कर दिया तो भी रिजल्ट फेल होगा, और बिना लॉजिक लव भी ज्यादा दे दिया बच्चों को या बड़ों को तो रिजल्ट फेल हो जाएगा। वी रिक्वायर बैलेंस, और इसीलिए जूरिस्ट का सिंबल ही क्या है, कोर्ट में भी क्या दिखाते हैं, बैलेंस। सो अनलेस एंड अंटिल देयर इज बैलेंस बिटवीन लॉ एंड लव, वी कैन डू जस्टिस। अनलेस एंड अंटिल देयर इज लॉ बिटवीन हेल्थ एंड लॉ, द सोसाइटी कैनॉट बी ए बैलेंस्ड सोसाइटी। And therefore, to have balance in our life, in each of our step, because we each one, whether we are advocates, whether we are doctors, engineers, or anyone, is required to take decision at our every step. Whether to do or not to do, whether I should do this much or I should do this much, या मुझे ऐसे करना है या वैसे करना है, इतना करना है। ब्रिजबोन भाई ने बहुत अच्छा कहा, every karma has two sides। वो पनिश भी करता है हमारा कर्म, तो हमको रिवॉर्ड भी देता है। इसीलिए हमें हर चीज के अंदर बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, और ये बैलेंस हमें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही सिखा सकती है। जिसके पास स्पिरिचुअल पावर होगा वो अपने लाइफ में सदैव सक्सेसफुल होगा, हैप्पी होगा, उसकी लाइफ में बहुत ही शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, ज्ञान होगा, उसके पास प्यूरिटी होगी, लव होगा। सो इफ आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ पीसफुल, हैप्पी, लवफुल, हार्टफुल, प्योर, knowledgeable, then I must follow spirituality in my day-to-day life. Spirituality कोई धर्म नहीं है, मतलब spirituality is a way of life, lifestyle. अभी हमने अपने जीवन में spirituality को अपनाया है तो क्या हम आपसे डिफरेंट हो गए? हम सिर्फ थॉट से अपने आप को आपसे डिफरेंट कर चुके हैं। वी हैव बिकम मोर हैप्पी, हमारे पास बहुत शांति है, प्रेम है, हम सभी को लव दे सकते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे हमारे साथ फिर भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत ही सुंदर गीत याद रहता है हमेशा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सो लवली सॉन्ग। तो हमें बस यही सिखाया जाता है कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे जो सुबह स्पिरिचुअल वर्जन चलते हैं और जिसको हम मुरली कहते हैं, उस मुरली की स्टार्टिंग ही होती है मीठे बच्चे, परमात्मा हमें इतना मीठा बना रहा है, चाहे हम कैसे भी हो गए फिर भी परमात्मा ने हमें हमेशा मीठे बच्चे ही कहा, और अंत में भी मेरे मीठे मीठे सिकिलिते बच्चों प्रति याद प्यार, तो वो वर्जन की स्टार्टिंग ही मीठे मीठे से है और अंत तक भी मीठे मीठे से ही होती है। तो हमें तो प्रेम की गंगा ही बहाना सिखाया जाता है और वो ही हम करते हैं। आप सभी यहाँ देख रहे होंगे, सभी यही कहके जाते हैं कि आप सभी मुस्कुराते हुए कैसे हैं। Only because of godly love, इतना प्यार हम परमात्मा से पाते हैं, उस प्रेम को, उस प्यार को हम सभी में बांटना चाहते हैं। और इसीलिए हम एक हेल्दी और लॉफुल सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट में आप सभी हमसे हाथ मिलाकर चलें, तो ये सोसाइटी और भी जल्दी स्थापन हो जाएगी। मगर ये भी एक नोट याद रखना, जो परमात्मा कहते हैं, आप चाहे इस कार्य में ज्वाइन हो या ना हो, मगर स्वर्ग इस धरा पर आकर ही रहेगा। परमात्मा धरा पर आए ही स्वर्ग स्थापन करने के लिए हैं। जो इस कड़ी में अपने हाथ भी ज्वाइन कर लेगा तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल बन जाएगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी इस कड़ी में अपने हाथ जरूर ज्वाइन करेंगे और इस धरा को स्वर्ग लाएंगे। तो चले हम सब अलर्ट होके बैठ जाते हैं और अभी तक जो भी सुना उसको थोड़ा माइंड के थॉट्स को हम स्टॉप करते हैं। मैं आपको थॉट्स दूंगी, आप उन थॉट्स के ऊपर विजुलाइज करते हुए, पिक्चराइज करते हुए अपने आप को उस दिशा में ले जाओ और आप अनुभव करेंगे कि कैसे हेल्दी बनना है और कैसे अपने जीवन को लॉफुली चला सकेंगे। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये सारी कर्म इंद्रियां कि मैं मालिक हूं, इस समय मैं अपने मन को चारों ओर से कंट्रोल करके अपने आप को आत्मस्थिति में स्थित करती हूं। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप खुशनुमा प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा। ये सारे वाइब्रेशंस, ये सभी गुणों को मैं आत्मा जन्म बाय जन्म इस नाटक मंच में पार्ट प्ले करते नष्ट कर दिए हैं। अब मैं स्वयं को परमपिता परमात्मा जो सूर्य और सागर है इन गुणों का जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर मेरी आत्मा गुणों से चार्ज होती जा रही है। मेरी अंदर की कमियां सूर्य की किरणें पड़ने से और सागर में स्नान करने से धुलाई हो रही है। मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। कितनी सुंदर किरणें हैं परमात्मा में से निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा अब अपने आप को गुणवान शक्तिवान और पावरफुल अनुभव कर रही हूँ। इन किरणों से मेरी हेल्थ बहुत सुधर गई। मैं अपने आप को हेल्दी और पावरफुल अनुभव कर रही हूँ और साथ ही साथ में कर्म फिलॉसफी को भी समझते हुए परमात्मा से शक्ति लेकर अपने आप को लॉफुल भी बना रही हूँ। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ जो मैं करूंगी जैसा मैं करूंगी जितना मैं करूंगी वो वैसा और उतना ही मुझे प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं अपने आप से दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं अपनी आत्मा को सदा परमात्मा से कनेक्ट रख अपने आप को हेल्दी बनाऊंगी गुणों और शक्तियों को धारण करके और साथ ही साथ लॉफुल भी रहूंगी। इन सभी शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए अब मैं अपने कार्य क्षेत्र पर उपस्थित होती हूँ। वाह कितना आनंद हो रहा है ये सुंदर परमात्मा से मिलन मनाकर शक्तियां और गुण प्राप्त करके। शुक्रिया बाबा शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लता देवी जी। मन इतना शांत हो गया है कि आवाज में आने की अभी इच्छा नहीं हो रही, ऐसा ही सबका है। तो हम मेडिटेशन के द्वारा अपने स्वयं का राजा बनते हैं, और जब हम स्वयं का राजा बनते हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी कार्य गलत नहीं होते हैं और श्रेष्ठ कार्य हम करने लगते हैं। यही मेडिटेशन सिखाया जाता है कि सेल्फ को पहले एम्पावर करना, सेल्फ सावरेन बनना, तो हम फिर वर्ल्ड को भी रूल कर सकते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.एन. जिंदल, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। हमने आपको कल भी सुना है और अभी मैं आपको आज के इस सत्र को अपने वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करके और ग्रीटिंग्स देने के लिए आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.एन. जिंदल जी।
थोड़ा दूर रखो। अच्छा चलो। आदरणीय मिस्टर जस्टिस एस पुजारी, आदरणीय बहन लता अग्रवाल, आदरणीय संदीप अग्रवाल जी, आदरणीय राजयोगी बीके पुष्पा दीदी जी, आदरणीय राजयोगी बीके नाथमल जी, और मेरे भाई बहन जो मेरे सामने ऑफ द डैश बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले सभी को ओम शांति बोलूंगा, ओम शांति। तो आज कल से हमारा ये सेशन चल रहा है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें शक्ति देती है और हमें बहुत आनंद देती है। मगर स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस बात पर मैं इस विषय पर कुछ बताना चाहता था। स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन, और या कहें हम ब्रूटैलिटी, इसका एडवर्स है। अगर स्पिरिचुअल लोग तो सभी हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग हमें नहीं पता है। सभी लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, या लोग मगर वहाँ मत्था टेकते हैं या 5-10 रुपए चढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमारा काम बन गया, मगर ये सोचते नहीं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें क्या यहाँ से मिला है। भगवान जो मंदिर में देवता बैठे हैं और आप में, यही फर्क है कि वो शांतमयी हैं, वो पूरा सब उन्होंने अपनी तपस्याएं करके वहाँ आए हैं, मगर आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये बस मंदिर में देवता बैठे हैं और हमारा ये काम कर देंगे। मगर स्पिरिचुअलिटी एक धर्मात्मा और एक डाकू का यही फर्क है कि डाकू की लाइन अपनी डिफरेंट है और धर्मात्मा की लाइन अपनी डिफरेंट है। उसके पास स्पिरिचुअलिटी है और डाकू के पास ब्रूटैलिटी है। ये है, ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है। ये अगर आपके थॉट्स कई किस्म के हैं, जैसे लता बहन ने बताया, ये 5-6 किस्म के हैं, जैसे सिविल थॉट्स हैं, क्रिमिनल थॉट्स हैं। जैसे नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो ईगो, हर्ट, एंगर, जेलसी, ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे अंदर हैं, जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो बाकी थॉट्स की बिना पर ए हम जल्दी लोग हम लोग जल्दी कैच करते हैं। जेलसी हमें बड़ी जल्दी आती है, हमें ईगो बड़ी जल्दी आती है, हमें कुछ आए ना आए मगर हम ईगो के भरे रहते हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ, मगर जो लोग इस वजह पे अपना प्राइड करते हैं वो एक्चुअली ये बात नहीं होती है। और जो नेसेसरी थॉट्स होते हैं
वो डे टू डे एक्टिविटी होती है या विदाउट एनी इमोशंस और बरी होती हैं, विदाउट इरिटेशन होता है, फियर और एंग्जाइटी होती है, ये नेसेसरी थॉट्स हैं जो हमारे हम बिना सोचे तब भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं, मगर ये थॉट्स कोई इतने डेंजरस थॉट्स नहीं होते। और जो बेस्ट थॉट्स होते हैं ये जैसे डस्टबिन में कूड़ा पड़ा रहता है, ऐसे हमारे ये दिमाग में बेस्ट थॉट्स आ जाते हैं जो कि हम पिछला फ्यूचर सोच पास्ट सोचते हैं, हमने ये हमारे से हुआ नहीं, ये हमने करा नहीं, हमको ये होना चाहिए था, हमने ये करना चाहिए था, या प्रेजेंट का सोचते रहते हैं कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, या फ्यूचर का सोचते हैं कि मेरा क्या बनेगा, ये बेस्ट थॉट्स हैं, मगर हम करना कुछ नहीं चाहते, एक्चुअली करना कुछ नहीं चाहते, ना हमने किया ना आगे से करना है, मगर एक बिना बात के हम संकल्प करते रहते हैं। अगर यह संकल्प हम ऐसे करें कि उनको प्रैक्टिकल में लेके आए, तो ये संकल्प प्रैक्टिस के में लेके आएंगे तो एक्चुअल में बदल जाते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली आप में स्पिरिचुअलिटी आती है। एक प्योर थॉट्स होते हैं, प्योर थॉट्स क्या होते हैं, जो ऐसे हम लोगों के गुड विशेष सोचते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं, और स्पिरिचुअल नॉलेज टू स्लो डाउन आवर माइंड, जो हमारा हाइपर होते हैं, हम भागते हैं इधर उधर भागते हैं, उसको स्लो डाउन करने के लिए ये स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी वही है। और तो एक जो जरूरी है, जो हम जिस बात पर बैठे हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी देते हैं, जो हमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है। वो थॉट्स हैं जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करो, या रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स करो, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, या कंटेंटमेंट होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, और ये पीस, जैसे बहन जी ने बताया कि जब हमें मन में शांति नहीं है तो अब हम इधर उधर भागते हैं, उसकी कोई वजह नहीं है, तो पीस हमारे अंदर होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो हैप्पीनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ये मन में आती है। वैसे तो एक्चुअली इसका बड़ा जबरदस्त संबंध है पॉजिटिव थॉट्स और स्पिरिचुअलिटी का। अगर तो आप कुछ स्पिरिचुअल हैं तभी तो आपके मन में ये पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नहीं तो आप उल्टा सीधा चलते रहते हैं। तो इस स्पिरिचुअलिटी इस वजह से ही यही रीजन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी लेने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप कभी जो कर्म करते हो आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता में भी लिखा है कि अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप तो ये सोचते हो कि अभी कुछ किया तो अभी इसका फल मुझे मिल जाए, ऐसे नहीं होता। मगर आप अपनी मेहनत करो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे लास्ट में टाइम मिलता है, 1 बज गया है, मगर मैं एक छोटी सी कविता इसी प्रशास्त के रथ पर या स्पिरिचुअलिटी के रथ पर चढ़ने के लिए लिखी थी, मैं वो थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ। काइंडली मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता क्योंकि मुझे तो टाइम लास्ट में मिला है। जो है अभी तक मोक्ष का पथ देखा कहाँ है, अभी तक सत्य का सत देखा कहाँ है, बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी के रथ मगर भागीरथ तुमने देखा कहाँ है। जो सर यात्रा से प्राप्त है वो यंत्र देता हूँ मैं, मनन कर लो तुम मन मना भव का, मैं ये यंत्र देता हूँ मैं। मनुष्य को जो देवता बना दे वो सब सिखाता हूँ मैं, नयन खोलो तुम्हें ये अनोखा रस दिखलाता हूँ मैं। हिम्मत शौर्य साहस और लगन इस रस के पहिए हैं चार, विवेक और बुद्धि के 2 अशब करते वेग का संचार। दया की रस्सियों से है अशब बंधे हुए रस से, शांति और संयम का चाबुक देता हूँ ताकि ये ना सटके पथ से। चलो इस रथ पर सर उठा के तुम चलो इस रस पर पावन कर्म से चंदन लगा के तुम चलते रहो जीवन पथ पर उसका नाम जपा के तुम देखना फिर कोई भी आपके भाग्य को ना भरमाएगा कोई आपका कोई नुकसान ना कर पाएगा। चलो इस रस पर एक बार हंकार भरकर कोई पैदा नहीं जग में हुआ जो आपको पराजित कर दे। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन जिंदल जी। अभी बहुत समय हो चुका है और मैं अपना कुछ कार्यक्रम बाकी है तो मैं अनुरोध करूंगी स्पीकर से कि समय को देखते हुए अपनी शुभकामनाएं संक्षिप्त में देंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रदर जगत किशोर प्रसाद जी, डायरेक्टर डेमीरा फ्रेट लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। आप आए और अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे ब्रदर जगत किशोर प्रसाद जी।
ओम शांति। ओम शांति। भाइयों और बहनों, इस पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने तथा अपनी कंपनी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि बीके परिवार ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मैं ORC दिल्ली की दीदियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जिनके सौजन्य से मुझे मधुबन आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक एवं अन्य प्राणी है जो अन्य जीवों से अलग है, जो सामान्यतः जंगलों में रहते हैं। जंगल का कानून जो अधिकार है वही सही है, उन मनुष्यों पर लागू नहीं हो सकता जो समानता कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं। कानून और न्याय की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। एक सफल न्यायिक प्रणाली किसी भी विकसित समाज की पहचान होती है। मैं महाभारत के क्रम में 11 बार अपने आने वाले प्रसिद्ध आश्वासन के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि यदो धर्मस्य जय, इसका अर्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य भी है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगत किशोर प्रसाद जी। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट ग्रीटिंग्स आपने दी है। परमात्मा कहते हैं जब आप लो फील करो तो आ जाओ मेरे पास, जब लव फील करना हो तो आ जाओ मेरे पास, जब लॉ फुलफिल ना हो तो मुझसे ले लो पावर, और जब आत्मा की लौ को फ्यूअल करना है तो मुझसे जोड़ो तार। तो परमात्मा से हमें लव भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी। आगे बढ़ते हुए मैं शुभकामनाएं देने के लिए ब्रदर संदीप अग्रवाल, एडवोकेट एंड नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन टैक्स प्रैक्टिशनर्स को इनवाइट करती हूँ। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ के 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में बहुत सी प्रोग्रेस की है स्पिरिचुअल लाइफ में। आप बहुत सेवाएं करते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस आदि भी आप कराते हैं, और अभी आप सभी जानते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर्स का बहुत पीक आवर्स चल रहा है। फिर भी हमने ऐसे ही उन्हें कहा और उन्होंने कहा जब बाबा के घर से बुलावा आया है तो मुझे अवश्य पहुंचना है, और वो पहुंच गए। तो करतल धन से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको आमंत्रित करती हूँ संदीप भाई को, आप शुभकामनाएं दें।
ओम शांति। सबसे पहले मैं याद करता हूँ परमपिता परमेश्वर को, जिनकी छत्र छाया में हम लोग सब यहाँ विराजमान हैं, ऑनरेबल जजेज ऑन द डायस, आदरणीय दीदियां और साथियों। साथियों, मैं बस सिर्फ एक या दो मिनट लूंगा। आज सुबह जब हम मुरली क्लास में थे, जिसमें हम ईश्वरीय महावाक्य करते हैं, तो उसमें बाबा ने आज एक वर्ड यूज किया कि बच्चों तुम ईश्वर की दुनिया में बैठे हो, ईश्वरी दुनिया में बैठे हो। तो इसका जरा सा एक मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग कल से महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं और इतने पदमों पदम भाग्यशाली हम हैं कि आदरणीय रतन मोहिनी दीदी जी के आज हमने यहाँ दर्शन किए, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ मन शेयर किया, जिनसे मिलना। और आप 99 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं और फिर भी आप देखें उनका तेज, देखें उनकी, तो इस सबके पीछे कारण क्या है? इस सबके पीछे है तप और साधना। यहाँ आप आए इससे पहले की दुनिया क्या थी और आप दो दिन में आपने यहाँ क्या देखा? आपने देखा होगा कि दो दिन में मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे आपको ऐसा जल्दीबाजी में भागता दौड़ता हुआ, कोई गुस्सा करता हुआ, किसी से आपने कुछ पूछा उसका गलत जवाब देता हुआ, या किसी भी तरह का इरिटेशन, टेंशन, ये नहीं देखा होगा। तो ये ईश्वरी दुनिया और बाहरी दुनिया का फर्क है। यहाँ जो बहने हैं, जो भाई हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं खुद 5 वर्षों से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और मुझे कई सेवाएं दीदी ने जैसे कहा करने का मौका मिला, तो सच में जीवन में बेहद परिवर्तन फील करने को मिलता है कि जब हमारा दिमाग, जैसे दीदी ने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल बजता है कि आप एक मिनट के लिए ब्लैंक हो जाइए, तो ब्लैंक क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे। आप कभी ट्रैफिक जनरली भी इस चीज को करके देखेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक मिनट का मौन धारण करके, मन को शांत करके, और आप उस चीज को फिर सोचिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये सिखाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कुछ नहीं है, सिर्फ एक 7 दिन का कोर्स है आपके, मतलब ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थान है कि आप अपने गूगल पे लगाएंगे तो हर 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई ना कोई बाबा का घर मिलेगा। आप जाएंगे तो जैसे हमारे माता पिता या हमारा परिवार जो स्नेह करता है, ऐसा स्नेह आपको सेंटर पे दीदियों से मिलेगा। और रोज की वहां की क्लास, जिसे सुबह मुरली बाबा के मधुर वाक्य करते हैं, जिसमें दीदी ने कहा कि मीठे बच्चे से बाबा शुरुआत करते हैं, सुबह सुबह अगर कोई भी व्यक्ति आपसे मीठे शब्दों में बात करे, सुबह आप अपने बेड से उठे और आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपसे आके कहे कि आज तो आपके चेहरे पे अलग ही तेज है, तो वो तेज आप अपने दिन भर की दिनचर्या में फील करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप निकटतम सेंटर पे जाएं, आगे दीदियां इसके बारे में और बताएंगी, ये कोर्स करें और आप अपनी, क्योंकि हम सब जूरिस्ट हैं, हम हमारे क्लाइंट की, हमारे, मैं कर सलाहकार हूं, उनकी सारी चीजें वो हमको, अपनी चिंताएं हमको दे जाते हैं और उसका निदान और समाधान हमसे मांगते हैं, तो हमें तो हमारी लाइफ को बड़ा पीसफुली और बड़ा थिंकफुल, थॉटफुल रहना पड़ता है कि दो रास्ते हमेशा नजर आते हैं। आप, हम तो देखते ही हैं कि एक ही तरह के इशू के दो जजमेंट आ जाते हैं, तो उस टाइम हमको किस रास्ते जाना है, तो इस चीज की हमें बहुत आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को ज्वाइन करें और यहाँ ये ऐसा संस्थान है, इसको ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा क्यों मिलती है कि आप इस पूरे कैंपस में घूमेंगे तो ऐसा कोई प्रोफेशन या ऐसा कोई डिपार्टमेंट जिसकी विंग नहीं है। आज हम एडवोकेट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम आपके बीच में बैठे हुए हैं और हम साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस करें, अपने लोग यहां भी और अपने लोग यहां भी, मतलब जो प्रोग्राम कराने वाली दीदियां हैं या यहां के एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, यहां आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, समर्पित भी मिलेंगे, और जो ग्रस्त थे और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी मानसिक शांति के लिए और संतुष्टि के लिए बहुत अच्छा संस्थान है, आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी। अभी हमारा थोड़ा ही सेशन बाकी है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो शब्द मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। और ऐसे ही हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी हमारे इस विंग की चेयरपर्सन हैं आप, और हमारे भी एक आधार है। दीदी जी अभी हमें आज के इस कार्यक्रम में इंस्पायरेशंस देंगे। दीदी जी हमारे दिल्ली के करोल बाग सेंटर्स हैं, उनके आप डायरेक्टर हैं, जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने लौकिक में बीए ऑनर्स बीएड और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। 1976 से आप समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से कुछ एक अवार्ड्स की मैं बताती हूँ। शक्ति लाइफ टाइम अवार्ड योगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया 2015, क्षत्रिय मुख्य समाज सेविका पुरस्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना द्वारा 1995 में दिया गया था। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अवार्ड तेलुगु एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मान सर्टिफिकेट दिया गया था। वैश्य शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा सरस्वती मोमेंटो प्रदान किया गया था। दीदी जी की बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत धैर्यवत गंभीर है आप, और उतनी ही मधुर भाषी मित भाषी है। हम जब भी इनके पास जाते हैं तो एक ऐसा मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। तो हमारे विंग में जो भी प्रोग्रेस हो रही है दीदी जी की अथक सेवाओं के कारण हो रही है, दिन दूनी रात चौगनी ऐसी प्रोग्रेस जूरिस्ट विंग अभी दीदी जी के मार्गदर्शन में कर रही है, और इसलिए अभी मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी इस कॉन्फ्रेंस में अपने इंस्पायरेशंस देंगे।
ओम शांति। हमारे आज के चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पूजा हरि जी, अन्य सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ऑन द डायस, आप सभी भी न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे आदरणीय मेहमान और अन्य सभी मेहमान और भाई बहने, आप बहुत समय से बहुत कुछ सुन चुके हैं और समझ ही गए हैं, जानते भी हैं, अनुभवी भी हैं कि वास्तव में समाज कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब मानव समझदार होते हुए मींस अंदर से एहसास करते हैं कि जीवन में शांति हर एक को चाहिए, और जब सभ्यता होती है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, मानव के अंदर गुण होते हैं, तो वह सहज हो जाता है। और ऐसा ही समाज एक समय था जब इस विश्व में था, जिसे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां सभी सुरक्षित थे, किसी को किसी से भय नहीं था, कोई चिंता या दुख डिक्शनरी में ही नहीं था, शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा सुखी समाज हम सब की, मैं समझती हूँ, आंतरिक इच्छा है, लेकिन वो आएगा कैसे, ये सोचने जैसा विषय है। और इस पर इस विश्वविद्यालय में न सिर्फ बताया जाता है, लेकिन उसी अनुसार यहाँ की सारी थ्योरी और यहाँ की बेसिक फिलॉसफी और जो परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता उनके द्वारा दी गई ज्ञान की समझ, उसे जीवन में ला करके वही प्रयास चल रहा है। और ऐसी ही बातें आप ऑलरेडी हमारे आदरणीय भाई साहब और अन्य वक्ताओं से भी सुन रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉ ऑफ कर्म आता है और उसको हम समझ लेते हैं तो लॉफुल होना सोसाइटी के लिए कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो हेल्दी भी अपने आप और वेल्दी भी अपने आप और हैप्पी भी अपने आप होता जाएगा, क्योंकि वो समाज ऐसा ही था जो हेल्दी भी था, हैप्पी भी था, वेल्दी भी था। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी बातें हैं उसको तो मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन उन सबके पीछे जो कारण है वो भी कई हैं, पर विशेष रूप से अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से और वास्तविकता को देखते हैं तो आज मानव के जीवन की कमी कमजोरी जो तृष्णाओं में बदल गई है, इच्छाओं में बदल गई है और जिसकी पूर्ति होना संभव भी नहीं है, टेम्परेरी मोमेंट्री सब कुछ होता है, लेकिन वो कहां से कहां ले जाता है मानव को। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा है, अनुशासन नहीं रहा है और वो स्वयं भी उसे पाकर कोई सुखी नहीं हो पाता, दुखी ही रहता है। तो जहां दुख की फीलिंग्स हैं वहां सारे वातावरण में, सारे समाज में वही ही फैलती हैं। इसलिए आज हर मानव उसी को ही महसूस कर रहा है तो सुखी जीवन कैसे बन सकता है। आध्यात्मिकता हमें यही ही बताती और सिखलाती है कि हमें जीवन को किस प्रकार से नियंत्रित करना है। मॉरल वैल्यूज उसका आधार है, डिवाइन क्वालिटीज उसका आधार है और देखा जाए तो न्याय भी वैल्यूज के आधार से ही होता है। कभी कभी कोई हमें पूछ लेते हैं, हम तो लीगल प्रोफेशन में हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, हम तो लॉजिक में जाते हैं, कानून पर ही टिके रहते हैं, हम क्या जाने इन सारी बातों को। लेकिन कानून भी किस आधार से बनता है, भले वो मनुष्य मेड है, ईश्वर के गॉडली लॉज भी बने हुए हैं, ईश्वरीय लॉज भी बने हुए हैं, वो नेचुरल अपने आप चलते ही रहते हैं और उसका ही एक्शन टू रिएक्शन भी होता ही रहता है। लेकिन मानव उतनी दूरदर्शिता से देख नहीं पाता और सिर्फ प्रेजेंट को ही देखता रहता है और उसके अनुसार कितना कुछ हो रहा है वो भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो न्याय भी मूल्य के आधार से ही है और आध्यात्मिकता भी मूल्य ही सिखाती है और वो जीवन में लाने की शक्ति देती है, ये अंतर है। पर दोनों ही मैं समझती हूँ एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे पर आधारित भी हैं। तो हमें ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा, इस बात की आवश्यकता है कि न्याय के क्षेत्र में भी जो भी निमित आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी लेवल पर है, चाहे जजेस हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं या अन्य सब लीगल प्रोफेशन में हैं, उन्हें भी अपने जीवन की उन्नति के लिए इन सब बातों की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम वर्ल्डली उससे देखते हैं, प्रोफेशनली देखते हैं तो आउटर जगत दिखाई देता है, पर इंटरनली अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कहीं भी हमसे कुछ ऐसा होता है तो आत्मा को अंदर से खुशी नहीं हो सकती और आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। टेम्परेरी कुछ वर्ष, कुछ समय हम उसको किसी भी ढंग से चलाते चले जाते हैं, परंतु समाज की नजरें तो सभी तरफ होती हैं। तो मेरा कहने का भाव अर्थ ये है कि हम अपने प्रोफेशन से, कार्य क्षेत्र से, पहले मैं एक इंसान हूं और परमात्मा ने हमें बताया है कि आप इंसान मेरी रचना है और ये हम सभी मानते हैं कि ये सृष्टि का रचयिता मालिक एक सुप्रीम पावर है और ये मानना भी आवश्यक है, लेकिन आप जानने की भी जरूरत है। और जानने तक ही नहीं, आप यहाँ जान रहे हैं, आपको यहाँ मेडिटेशन कोर्स में भी सब क्लैरिटी इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका मुझे संबंध लेकर उसका मुझे लाभ कैसे जीवन में लेना है, ताकि मेरी अंतरात्मा सदा प्रसन्न रहे, मुझे कहीं भी कचोटे नहीं, मुझे कोई ऐसा सपना भी ना आए जो दुखदायी हो। ये आध्यात्मिकता सिखलाती है कि मेरी इंटरनली सेटिस्फेक्शन, इंटरनली हैप्पीनेस, इंटरनली स्ट्रेंथ इतनी है। क्योंकि कहीं भी कुछ होता है, हम सत्यता से हटते हैं, हम मॉरल वैल्यूज से हटते हैं, चाहे किसी को नहीं मालूम, परंतु मेरी आत्मा धीरे 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 इस स्तर पे पहुंच जाती है। ए लाइफ फिल्ड विद वैल्यूज इज ए लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तब मेरी आत्मा खुद भी अपना सम्मान करना जानती है और अन्य भी उसका सम्मान अवश्य करते हैं, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और जब हम इस निश्चय से कार्य क्षेत्र में रहते हैं, अपने जीवन में अपने कर्मों को निभाते चले जाते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा समाज आने में अब बहुत देरी नहीं रही है, नहीं रही है, और शीघ्र ही ऐसा समाज आकर ही रहने वाला है। और उसमें आप हम सब होंगे ना, क्या प्रॉमिस करते हैं आप सब, हाँ क्या प्रॉमिस करते हैं आप सब, हाथ खड़ा करके अपनी बताइए। हाँ वेरी नाइस, फिर तो ताली बजाइए। न्याय कानून सजा देता है और जरूरी है, क्राइम हुआ है, परंतु क्या हमने उसके निर्णय में एक पक्ष तो ठीक सोचा, लेकिन दूसरा पक्ष, क्योंकि वो एक मानव है, चाहे उसके आज कॉन्शियस ठीक नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन मेरी कॉन्शियस भी उन सब के प्रति क्या इतनी पॉजिटिव है कि मैं उसके उत्थान की बात सोचूं, उसके परिवर्तन की बात सोचूं, उसके मॉरल हेल्थ की बात सोचूं, उसका मॉरल ट्रीटमेंट हो ऐसा सोचूं, जेल में भी इस प्रकार से उसके साथ चला जाए कि वो रियलाइज कर सके कि उसने ये क्राइम किया है, तब मेरे को अंदर से फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो सकती है और होगी। तो ये आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र में, अपने कार्य व्यवहार में, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए स्वयं भी सफल होते जाए और अन्यों के जीवन में भी वैसा ही एहसास दिला सके और उनको उनके जीवन का परिवर्तन हो सके। और इसी ही लक्ष्य से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये डिवाइन नॉलेज, आध्यात्मिकता, क्योंकि जीवन में शक्तियां लाती है, जीवन जीने की शक्ति देती है, कला देती है, और आध्यात्मिकता ही हमारे आत्म उत्थान का एक ही मात्र रास्ता है। कर्म कांड को करते ही चले आए, करते ही चले आए, और समाज की दशा कहां से कहां पहुंच गई है, परंतु सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यकता इस बात की है। और स्पिरिचुअलिटी हमें इंटरनली रियलाइजेशन देती है और साथ साथ रिलेशन देती है उस सुप्रीम फादर ऑल माइटी के साथ, जिससे हमारे जीवन में शक्तियां आती है। आध्यात्मिकता से ही उमंग और उत्साह सदा बना रहता है। आध्यात्मिकता हमारे को इंद्रियों पर शासन करना सिखलाती है। आज मानव उसके वशीभूत हो चुका है और इसलिए उस समय वो राइट और रॉन्ग सोच नहीं पाता और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं सोच पाता है, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति रही ही नहीं है। ऐसे ही आध्यात्मिकता से हमारे जीवन के अंदर जो सच्ची खुशी आती है, परमानेंट शांति आती है, वो ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। और जब एक से एक दीप जगता चला जाएगा तो ये सारा ही भारत देश, तो क्या विश्व ही जगमगा उठेगा, एक प्रकाशमय संसार बन जाएगा जहां अंधकार और दुख की बात ही नहीं दिखाई देगी, और एक ऐसा समाज आएगा जो अपने आप में ही मर्यादित होगा, लॉफुल होगा और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अधिक न समय लेते हुए मैं यही शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही समाज को लाने का प्रयास और अधिक अच्छी तरह से आध्यात्मिकता और न्याय मिलकर जुलकर करते रहेंगे तो बहुत ही ऐसा दिन आया कि आया। ओम शांति। और आप भी खुश रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी। बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में आपने हमें विषय को भी समझाया और प्रेरणाएं भी दी जीवन के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सुप्रीम जस्टिस जो है उनके साथ हमें रिलेशंस कैसे रखने हैं इसके बारे में बताया। अभी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है। मैं आदरणीय पुष्पा दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंचासीन मेहमानों को आज के सौगात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से सौगात दे और उनका सम्मान करें। बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप आगे आ जाएं।
हाँ बोल दो।
आदरणीय पुष्पा दीदी जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पुजारी जी का सम्मान भी कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन जिंदल जी, ब्रदर जगत किशोर प्रसाद, ब्रदर सुशील रस्तोगी जी, आप सभा में हो तो आगे से सुशील रस्तोगी जी, मैं आमंत्रित करती हूँ राज्यों की भ्राता नथमल भाई, डॉक्टर नथमल भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, आप आए और सभी का आभार प्रदर्शन करें। नथमल भाई जी पिछले 45 वर्षों से अधिक समय से कटक सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। बहुत छोटे पन में ही वो आप ज्ञान में आए हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और जितनी भी हमारे विंग है, मीडिया विंग है और जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के भी सभी 5 मिनट बैठ जाए, बस 5 मिनट सभी बैठ जाए प्लीज। और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं तो ऐसे भ्राता जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करें।
ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से ओम शांति। आज का ये सुंदर कार्यक्रम आप सभी को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया और मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की पावर धीरे धीरे प्रवाह करती हुई आप शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति का अनुभव खुद करेंगे और वही शक्ति लेकर के आप अपने कार्यस्थल पर अपने क्लाइंट के साथ अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करेंगे और तभी हम इस सोसाइटी को हेल्दी एंड हैप्पी बना सकते हैं। यही है हमारी आध्यात्मिकता। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी भले ही हमारे स्टेज पे नहीं है लेकिन उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। आपको बताया भी गया कि आज उनकी शतायु 100 वर्ष की उम्र होते हुए भी आपने उनका चेहरा देखा कितना खुशनुमा कितना शक्तिशाली कितने वाइब्रेशन पॉजिटिव। तो हमारी रतन मोहिनी दादी जी को हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शुक्रिया करते हैं। और हमारे परम आदरणीय जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी उनको भी क्योंकि उनका दूसरा भी कार्यक्रम चल रहा है पॉलिटिशियन विंग का जैसे हमारा जूरिस्ट विंग का तुम्हारा एक दूसरा कम्प्लेक्स है वहां पर उनका कार्यक्रम था इसलिए आपको भी जाना पड़ा। तो आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी का भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी परम आदरणीय संतोष दीदी जी जो जॉइंट चीफ हैं हमारी उनको भी दूसरे कार्यक्रम में जाना था तो हमारी परम आदरणीय संतोष दीदी जी का भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में स्वागत के लिए हमारे जस्टिस बीडी राठी जी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जूरिस्ट में जुडिशरी में रहते हुए भी पोस्ट पर रहते हुए भी ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर क्लास करते हैं। आज भले ही वो रिटायर हो गए हैं लेकिन जब पोस्ट पे थे जब वकालत करते थे तब से लेकर के हाईकोर्ट जब जजशिप से रिटायर होने तक और आज तक रेगुलर ब्रह्मा कुमारी में आते हैं। मैं बहुत जजों से मिलता हूं और सब वो एक ही बात कहते हैं कि हमें ओथ दिया गया है कि हम नहीं जा सकते हैं लेकिन आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि वो जस्टिस साहब का ओथ लेते हुए उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भी ब्रह्मा कुमारी में रेगुलर स्पिरिचुअलिटी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी पर्सनल लाइफ है तो इसलिए हमारे राठी साहब का भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारी हमारी पुष्पा दीदी जी जो इस जूरिस्ट विंग की लीडर हैं चेयरपर्सन हैं हमारी जूरिस्ट विंग जो आगे बढ़ रही है जो काम कर रही है उसके पीछे हमारी परम आदरणीय पुष्पा दीदी जी का सानिध्य है उनका हमारी एडवाइस है उनका लीडरशिप में ये काम कर रही है तो इसलिए हम बहुत दिल से हमारी पुष्पा दीदी जी का बहुत बहुत दिल से आभार मानते हैं। बहुत जोरदार तालियों से हमारी पुष्पा दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। और आपने कितना सुंदर बहुत कम शब्दों में देखिए एक सार की बात आपने सुनाई। और हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर लता दीदी जी जो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को पीछे रखते हैं और जो भी कार्य आप देख रहे हैं उसके पीछे हमारी लता दीदी जी का हाथ है इसलिए जोरदार करतल धोनी से हमारी लता दीदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे ऑनरेबल जस्टिस पुजारी जी आपने सुना उनको जब भी हम कहते हैं क्योंकि आप भी कटक में हाईकोर्ट है और वहां पर आप सेवाएं देते रहते हैं और आज अभी ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हैं लेकिन मैंने देखा इतना जोली मूड और इतना खुशी से किसी एक चाहे किसी कैसा भी व्यक्ति हो उनके सामने आता है तो उनके साथ में बहुत प्रेम से बात करते हैं और प्रेम से व्यवहार करते हैं। और इस विद्यालय के लिए 2003 से मैं देख रहा हूं कि जब भी उनको याद करते हैं जब भी उनको आप निमंत्रण देते हैं हम लोग तो वो तैयार रहते हैं तो इसलिए हमारे पुजारी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से। और आपने कहा हाँ हमारे कटक में भी आपने लीडरशिप लेकर के कार्यक्रम करवाया और अभी फिर आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि हमारे संबलपुर में उड़ीसा में फिर से आप कार्यक्रम कराने के लिए हमारी दीदी को निमंत्रण दे रहे हैं और वो प्रोग्राम भी फिक्स हो गया है 14 दिसंबर का। तो इसलिए हमारे पुजारी जी हमेशा इंथ्यूस्टिक रहते हैं हमारी विश्व विश्वविद्यालय के एक वो भी शान है, और हमारी जो एम एंड ऑब्जेक्ट इस कॉन्फ्रेंस का बताने के लिए डॉक्टर रश्मि ओझा जी ने, जो खास बॉम्बे से और हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसे हमारी महान हस्ती रश्मि ओझा जी का बहुत सारे अवार्डों से आपको नवाजा गया है, तो आपका भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस ए एन जिंदल जी, जिंदल साहब बहुत ही देखिए सरल चित्त आत्मा है, मैंने उनसे बहुत नजदीक से मिलता रहता हूँ, इतना निर्माण चित्त, इतना सरल चित्त है, तो ऐसे हमारे जिंदल साहब का भी, और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ पधारे हुए हैं, उनके रिलेटिव के साथ आए हुए हैं, तो उनको और उनके धर्मपत्नी जी और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हमारे जगत किशोर प्रसाद जी, जगत भी समाया हुआ है और किशोर भी प्रफुल्ल भी रहते हैं और सबको प्रसाद बांटते हैं, तो ऐसे हमारे जगत किशोर प्रसाद जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और संदीप अग्रवाल जी, आप देखिए सबको एडवाइस भी करते हैं और यहाँ पर भी आपने उनके भाषण में क्या सुना, एडवाइस सबको राय दिया कि आप भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए, अब उनको क्या फायदा होगा, वहां जो एडवाइस देते हैं उनकी फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यों एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी ब्लेसिंग आपकी, अगर आप जुड़ गए तो आपकी ब्लेसिंग उनको मिलेगी, तो वो सबसे बड़ा धन है, तो बिजनेसमैन पक्के हैं और एडवाइस देने वाले पक्के हैं, तो ऐसे हमारे संदीप जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी श्रद्धा बहन मन संचालन के लिए देखिए कितना कुशल मन संचालन करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बहन का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और छोटे छोटे तीनों बच्चों ने देखो कितना सुंदर डांस किया, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतनी सुंदर कला में निपुण हैं, तो ऐसे हमारे सुंदर कलाकारों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सबका अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम भी नहीं होता, खाली स्टेज पे बैठने वाले कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं जब तक आप सामने नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साउंड सिस्टम, मीडिया सिस्टम, जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आखिर में हम सभी को इस कार्यक्रम की प्रेरणा देने के लिए निमित्त अर्थात परमात्मा, जिसको हम पहले भी और आखिर में भी उसी का शुक्रिया है, उसी का धन्यवाद है, जिसके कारण सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो फिर परमात्मा का भी हम पुनः धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।
आदरणीय नाथमल भाई जी का भी बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम शाम को, आप सभी को ज्ञात हो कि शाम को 5 बजे यहाँ पर सेशन है और आप सभी भी समय पर यहाँ आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है शाम को समय पर 5 बजे पहुंचे। अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
याद कीजिए पल पल।